ओम शांति। पेट्रोल में अगर कचरा आ जाता है ना तो गाड़ी रुक जाती है, ऐसे ही ये भी हमारी जीवन रूपी गाड़ी, आध्यात्म राह पर चलने वाली बढ़ने वाली गाड़ी, अगर उसमें दुविधाएं पैदा हो जाती हैं, कभी दुविधाएं, कभी संशय, कभी शक या कोई भी प्रश्न पैदा हो जाते हैं, तो हमारी गाड़ी में भी चलते चलते रुकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कहीं भी हम अटके नहीं, रुके नहीं, सदा गतिशील बने रहें, हर प्रश्न से ऊपर चले जाएं। बाबा तो कहते प्रश्नों से पार प्रसंचित बनो, वो स्थिति हमारी सदा बनी रहे, उसके लिए आज ये आपके पास सुंदर मौका है। जो दुविधाएं, जो कचरा, जो कुछ हो उसको साफ करने के लिए हमारे पास राजू भाई बैठे हैं। आप लोग लिख के लाए हैं कोई प्रश्न, हाथ खड़ा करें, लाए हैं। अगर आपके पास कागज में लिखा हुआ हो तो दे सकते हैं। और जी, और भी कोई प्रश्न हो तो आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। आज की पूरी इजाजत है इन घंटों में, उसके बाद कभी जीवन में नहीं लाना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ये बात। तो लाइए, कोई और देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं आपके सामने ही समर्पित कर रही हूँ आपके प्रश्न।
आप रखो ना पढ़ना, मैं आप बैठ जाओ, कुर्सी ले लो ना।
देखो हमारे पास राजू भाई भी हैं और भी बहनें भी हैं, कविता बहन भी हैं, समर्पित बहनें, जानते हैं कविता बहन।
आओ कविता बहन इधर आओ,
आओ कविता बहन आप भी सामने आओ। कविता बहन हमारी बहुत पुरानी सखी हैं, भरतपुर में आप सेवाएं अपनी दे रही हैं और आज हमारे बीच अनायास है। और भी कोई सवाल देना चाहता हो तो दे सकता है, बीच में भी पूछ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन दे दे तो शुरुआत बहुत सुंदर होती है। बस चालू करें जी। अच्छा, फर्स्ट पेपर फर्स्ट सब जवाब आएंगे, चिंता मत करो, सबके जवाब देंगे आज। तब तक नहीं जाएंगे आज जब तक पूरे सवाल नहीं हो जाते, ठीक है ये बात। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हम राजू भाई से अनुरोध करेंगे कुछ सुनाएं, उसके बाद ही प्रश्नों पर आएंगे, ठीक है।
आप भी कुर्सी लेना, ये रख दो, इसको हटा दो। ओम शांति। बाबा की मुरलियों में सभी बातों का समाधान समाया हुआ है और मैं भी जो आपको उत्तर दूंगा वो केवल मुरली के आधार पर ही दूंगा या अपने अनुभव के आधार से। जिन बाबा के बच्चों को मुरली से प्यार है और ध्यान पूर्वक रोज की मुरली सुनते हैं, साकार बाबा की मुरलियों में सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान मिलता रहता है। फिर भी कोई कोई की पर्सनल अपनी बातें होती हैं जो मन के अंदर उठती रहती हैं और उनका वे समाधान चाहते हैं। तो आज हम आप सबके साथ बाबा के ज्ञान रत्नों की ही चिट चैट करेंगे। चलते फिरते कई बातें माताएं भी पूछती हैं, भाई भी पूछते हैं। कल मैं क्लास कराने जा रहा था तो एक माता ने मुझे रोक दिया बीच में, भाई साहब एक बात का उत्तर देके फिर क्लास में जाओ। तो मैंने कहा मैं क्लास में उसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन कल क्लास की टॉपिक थोड़ी अलग थी, इसलिए कल के क्लास में मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, अभी दे देता हूं पहले उसको ही। उसने प्रश्न किया, देही अभिमानी स्थिति और आत्म अभिमानी स्थिति में अंतर क्या है? किसका प्रश्न था, कौन माता थी? हाथ उठाएंगे, बैठिए, है ही नहीं, अभी तक आई नहीं क्या? तो उत्तर दूंगा तो कहेगी हमारे को तो मिला ही नहीं, हुआ ही नहीं सर। हाँ शुरू करें, फिर वो माता जी अगर आ जाएंगी, मैं भी इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन अंजलि बहन की मम्मी के साथ थी वो। कहाँ बैठे? पैकिंग कर रहे। अच्छा ठीक है, आएंगी क्लास में तो उस समय उत्तर दूंगा, ठीक है, बाकी दूसरे प्रश्नों के उत्तर ले लेते।
अशरीरी स्थिति का इसमें भी प्रश्न है, उसको छोड़ देती हूँ क्योंकि उस माता के लिए भी रखा है, तो इसमें भी छोड़ देती हूँ। कुछ ऐसे मिलते हुए प्रश्न एक साथ पूछ लेती हूँ। बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में अनुभव करने के लिए क्या करना है? ऐसा ही इसके साथ मिलता हुआ एक प्रश्न मैंने अभी अभी पढ़ा था, बाबा को भोग कैसे खिलाएं, भोग कैसे ऑफर करना है, उसके लिए क्या करें? हाउ टू ऑफर भोग शिव बाबा।
हमारे साथ बहुत अनुभवी बहन भी बैठी हैं, कविता बहन जी, और कुछ प्रश्नों के उत्तर वो भी देंगी, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिनको प्रैक्टिकल वाले जब सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन भोग की बात तो मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी माताएं, बाबा कहता है कि बाबा को भोग लगा करके प्यार से पहले ऑफर करो, खिलाओ, फिर परिवार वालों को खिलाओ। भोग के अंदर बाबा को जो हम भोग स्वीकार कराते हैं उसमें बहुत भावनाओं की जरूरत है, बहुत शुद्धता की जरूरत है। बाबा ऐसा वैसा भोग स्वीकार नहीं करता। एक बार एक संदेशी बाबा के पास भोग लेके वतन में गई, तो ऊपर जाते ही उसको बाबा ने कहा, बच्ची आज क्या लेके आई हो? तो बोला, आज बाबा बहुत प्यार से माताओं ने भोग बनाया है आपके लिए, मैं लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा बहुत प्यार से बनाया है? तो बाबा ने कहा, खोलो। तो जो उसने हाथ लगाया तो खोलते ही उसमें से एक इतना बड़ा सांप दिखाई दिया इसे। वो डर गई एकदम से, और एकदम से उसकी आंखें खुल गई, नीचे आ गई, ऊपर से भाग गई। तो नीचे आके कहती, आपने इसमें क्या बना के दिया है, क्या है इसके अंदर? तो बोली, हम तो बहुत शुद्धता से, बहुत स्वच्छता से बनाया, भोग है इसमें और कुछ नहीं है। बोला, वतन में तो इसमें एक सांप दिखाई दिया मुझे थाली के अंदर, बाबा ने मुझे कहा खोलो, तो मैं ऐसे जो हाथ लगाया वो सांप बाहर आ गया। तो नीचे जब आई तो बहनों को बोला, भाई क्या दिया है? तो बहनों ने कहा, मैंने तो बहुत प्यार से बनाया, मैं खोलती हूँ, आपको ऐसे कुछ दिखाई दिया होगा। तो जब उसको थाली को खोली तो उसके अंदर एक बाल था काला काला। बहने भोजन बनाते समय कई बाल गिर जाते हैं ना, तो उस भोजन के अंदर, भोग के अंदर बाल था जो बाबा ने वहां सांप के रूप में उसको दिखाया। समझ गए क्यों? क्योंकि अगर मान लो भोग बना रही हैं, भोजन इतना शुद्ध है तो उसके अंदर इतनी शुद्धता चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज उसके अंदर नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो खाने वाले का दिल कच्चा हो जाता, खाएगा ही नहीं। तो बाबा ने उसे लेसन पढ़ाया कि बहुत शुद्धता चाहिए, विचारों की भी शुद्धता, तन की भी स्वच्छता और साथ साथ भावनाओं की, बहुत बहुत अंदर की भावनाएं बाबा के प्रति। तो बाबा ऐसे भोग पर दृष्टि डालता है। शिव बाबा खाता तो है नहीं, लेकिन कहता मैं वासना जरूर लेता हूं और मैं दृष्टि से शक्ति दे करके उसको शक्तिशाली बना देता हूं। तो खिलाने वाले को खिलाना जरूर है और वतन में बाबा को ही इमर्ज करके हम खिलाते हैं। और खास बाबा कहता है वतन में भोग लगाने आओ। साकार में बाबा आते हैं, यहाँ बैठे होते हैं। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर बाबा आए हुए थे इसी संदली पर, यहाँ गद्दी पर, और एक बहन वहाँ भोग लगाने के लिए बाबा के कमरे में जा रही थी तो थोड़ा मजाक के रूप में मधुबन के भाई खड़े थे, तुम कहाँ फोटो पर भोग लगाने जा रही, बाबा तो यहाँ आया हुआ है, यहाँ भोग लगा रही हो। तो उसको संकल्प चले, बात तो ठीक है, बाबा यहाँ है और मैं यहाँ कमरे में भोग लगा रही हूँ, तो ये कहाँ तक यथार्थ है? जब बाबा साकार में बैठा है तो कमरे में भोग लगाने की जरूरत है या नहीं, बोलो? नहीं नहीं। बाबा ने बड़े प्यार से इसका उत्तर दिया, कहा बच्ची बाप को भोग तो मूल वतन में लगाना है, सूक्ष्म वतन में लगाना है। यहाँ तो बाबा आता है, भोग वहाँ ले जाने का अर्थ है कि वहाँ के जो पवित्र वायुमंडल है, जो वहाँ की पवित्र शक्तियाँ हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा रहता है सदा, तो वहाँ जाते ही उस भोग के अंदर शक्ति भर जाएगी। और बाबा तो बहुरूपी है, एक सेकंड में यहाँ है, एक सेकंड में वहाँ है। अगर आपकी भावनाएं वहाँ पहुँच गई तो बाबा वहाँ हाजिर हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं, बाबा यहाँ है तो वहाँ कैसे जाऊँ। बाबा कहता भोग तो ऊपर आकर के मेरे पास वतन में आकर के स्वीकार कराओ और वहाँ की पवित्र किरणों से वो भोग चार्ज हो जाएगा। इसलिए अव्यक्त वतन का अनुभव कैसे करें, जितना जितना आप लाइट की ड्रेस में रहेंगे, माना बहुत हल्के हो करके रहेंगे, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन दूसरा नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जैसे हड्डी मांस का शरीर है ही नहीं। अभ्यास करते करते जो बाबा के बच्चे व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे रहते हैं वो अव्यक्त वतन का सहज अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्त भाषा नहीं है, व्यक्त भाव नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है अपनी दिनचर्या के अंदर व्यक्त से ऊपर रहो, व्यक्त में नहीं आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को अव्यक्त वतन का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव बहुत सहज होने लगता है। कोई ऐसी देखने की चीज नहीं है जहां आप देखेंगे, लेकिन बहुत हल्कापन है, ऐसा लगता है जैसे एक शरीर भी एक रुई का है, कोई भी बोझ नहीं है, आत्मा भी हल्की है। और हल्केपन में बाबा से जो रूह रिहान होती है तो संदेशियों को भी बाबा कोई साकार शरीर, पूरा हड्डी मांस का पुतला नहीं दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे छाया का शरीर होता है, लाइट का शरीर है, और उस लाइट में ब्रह्मा बाबा का फेस इमर्ज होता है, आंखें इमर्ज होती हैं, और उसी से वो रूहरियान करके फिर वापस आते हैं। इसलिए अव्यक्त वतन का अनुभव, अव्यक्त भाव और अव्यक्त भाषा को धारण करने वाली आत्माएं सहज कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में ले जाएंगे तो मूल वतन वाला बाबा अपने आप ऑफर स्वीकार कर लेगा, क्योंकि आएगा तो मूल वतन से ही ना बाबा। तो हम जब याद करते हैं तो सूक्ष्म वतन तक जाते हैं और बाबा का आवाहन करते हैं तो बाबा ब्रह्मा के अव्यक्त तन द्वारा भोग स्वीकार करता है, दृष्टि डालता है। जी लंच और डिनर दोनों का लगाएंगे तो बहुत अच्छा। बाबा तो यहाँ तक कहता है जो कुछ खाते हो, पानी भी पीते हो, तो एक सेकंड बाबा को ऑफर करो, बाबा को बुलाओ दृष्टि डाल करके, फिर पियो तो वो शक्तिशाली बन जाएगा। चलो ठीक है, जितना भी समय है अगर आप थोड़ा सा इसमें धैर्यता का गुण जरूर ढाको, जल्दी 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 वाली बात नहीं है। जितना धैर्यता से शांति से आप योग युक्त होकर बनाएंगी, अगर मान लो बहुत जल्दी है बच्चों को खिला दिया, कोई डिस्टर्ब होकर के नहीं जाए, लेकिन दोपहर का रात का भोग कायदे से जो बन सकता हो तो खिलाओ। बाकी नाश्ते की बात है, वो स्कूल जाना है और आप आंख बंद करके बैठे हो तो कहेंगे क्या मंत्र कर रहे हैं यहाँ, और बिगड़ने लगेंगे ना घर में। तो आप बहुत भूख, तो आप 3 मिनट नहीं तो कम से कम बाबा के पास रख करके ऑफर करके 1 मिनट में फिर बच्चों खिलाओ, कुछ तो करो।
इसमें थोड़ा सा एडिशन मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग नाश्ते की तैयारी आधी से ज्यादा रात को ही या पहले से ही करके रखें, अमृत वेले अपना योग करने के बाद करें तैयारी। अगर पूर्व तैयारी है तो काफी समय बचता है, ऐसा अनुभव कहता है, कोशिश करें। बाकी तो फिर राजू भाई ने जैसे कहा कि 1 मिनट भी करें, करें जरूर।
नहीं, वो भोग वाला ही खा के जाना चाहते तो और अच्छा है ना आपको। ये गलत है।
मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ बीच में, कि एक बार एक फॉरेनर बहन थी, उसको भोग लगाना नहीं आता था, और वो क्या करती थी, भोग बनाया भोग रखा और तब तक वो सारा टाइम अपना ऑफिस की तैयारी वगैरह करके आके आ जाती थी और बाबा को कह के जाती थी, बाबा आप भोजन कर लो, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो फिर एक दिन आप भोजन कर लो फिर मैं थाली उठाने आ जाऊंगी, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो एक बार दादी जानकी ने टीचर्स बहनों की क्लास में बहुत सुंदर इस बात का जवाब दिया था कि बहने कभी ऐसे भोग नहीं लगता है, ऐसे भोग नहीं लगता जो हम सोचे नहीं। तो वही बात, वही
तो भक्ति वाली बात हो गई ना, ये तो भावना की बात है। बाबा को जितना दिल की भावनाएं हैं, उतना प्यार है, उतना स्वीकार कर लेगा वो। ऐसा है कि देखो, शक्तिशाली भोजन बनाना, भोग क्या करेंगी, वो भोग को उसमें मिलाने की जरूरत है। आप बाबा तो खाएगा नहीं कुछ, बाबा तो शक्ति देगा ना, तो वो जो भोग आपने लगाया उस भोग को जनरल भोग में मिलाना है, मिक्स करना है, जिससे वो खाए तो उसका मन शुद्ध हो जाए। तो ऐसा थोड़ी टिफिन में रख दिया, अलग कर दिया और टिफिन दे दिया उसको,
तभी भोग बनेगा जब भोग मिक्स होगा।
आपका भोजन भोग बना ही नहीं ना, भोजन आपने बच्चों को टिफिन में दे दिया, बाबा को भोग लगा रही, वो भोग कौन खाएगा? अगर आप खाएंगी नहीं, उसको खिलाएंगी नहीं, तो उसका मन शुद्ध कैसे होगा? तो भोग का मतलब तो यही है कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो। किस लिए भोग लगा रहे हैं? खाने वाले का मन तन स्वस्थ और शुद्ध हो, और उसके लिए विधि तो यही है कि भोग लगाओ, थोड़ा सा लगाया उसको सब में मिक्स करके फिर सबको खिला दो।
अच्छा, ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है, ब्रह्मा बाबा और दादा लेखराज, दादा लेखराज फिर ब्रह्मा बना ना, तो ब्रह्मा बाबा और दादा लेखराज दोनों की स्थितियों में कौन सा फर्क है, और इसको पार करने के लिए उन्होंने क्या विधि को अपनाया?
ऐसा है कि लौकिक नाम दादा लेखराज ही था, और लौकिक जीवन के अंदर उनके पास भक्ति का बहुत अनुभव था, सुना होगा 12 गुरु थे, नारायण के अनन्य भक्त थे, और बिना गीता पाठ के कोई भी चीज खाते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे। भक्ति काल उनका अपना बहुत सुंदर व्यतीत था, लेकिन जब बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा की प्रवेशता के साथ साथ उस आत्मा में परिवर्तन आता गया। लेकिन मेहनत ब्रह्मा बाबा की बहुत जबरदस्त थी, जो शुरू में बाबा ने इस तन को चुना उसके करीब 4-5 साल पहले 1932 की डायरी बाबा की हम लोगों के पास है, साकार बाबा ने जो अपने हाथ से लिखी है, और उसमें लिखा है अपने अनुभव, जब ध्यान में बैठता हूँ तो मन बड़ा चंचल है, वो एकाग्र नहीं होता है। तो उससे बात की उन्होंने, डायलॉग किया है मन से, बुद्धि से, कर्म इंद्रियों से, और ऐसा लगता है कि भक्ति काल के अंदर भी बाबा ने अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए बहुत मेहनत की, और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप उनकी कर्म इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ गई। उस मेहनत का फल हुआ कि जो शिव बाबा जब प्रवेश हुए तो सहज ही इस आत्मा के द्वारा लोगों को अनुभव होने लगे। भक्ति का जो बैकग्राउंड था वो शिव बाबा को स्तन के द्वारा बहुत मदद मिली। इसलिए ब्रह्मा बाबा को चेंज करने में समझता हूँ कोई अधिक समय नहीं लगा होगा, भक्ति काल के अंदर उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया था और शिव बाबा का प्रवेशता के साथ उस आत्मा के अंदर पवित्रता का बल आ गया और उसके आधार से वो आत्मा चेंज हो गई। इसलिए कोई ऐसा पुरुषार्थ मेहनत वाला शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा ने किया हो मैं नहीं समझता हूँ, करने की जरूरत पड़ी होगी।
सूक्ष्म वतन से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा? और साथ ही साथ एक और इसी के साथ सवाल है कि दृष्टि से दूसरों को साक्षात्कार कराने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें हम भी साक्षात्कार औरों को करा सके उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
अभी हम लोगों को ये लक्ष्य रख करके कोई भी दृष्टि देने की आदत नहीं डालनी है कि मेरी दृष्टि से लोगों को साक्षात्कार हो जाए। ये तो बाबा कहता है चाबी मेरे पास है, मैंने किसी को दी नहीं है और देगा भी नहीं, नहीं तो बहुत कुछ उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ होने लगेगी। इसलिए बाबा ने किसी को भी चाबी नहीं दी है। हमारी जितनी योगयुक्त स्थिति होगी, जितनी रूहानियत में रहने का अभ्यास होगा, हमारे वाइब्रेशन उसको अच्छे अनुभव कराएंगे, उसको लगेगा ये आत्मा बहुत पावरफुल है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, इसकी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, उसका अनुभव उसको बाबा की तरफ खींचेगा। बाकी साक्षात्कार हो जाए फिर बाबा का बच्चा बने वो चाबी हमारे पास नहीं। आज बाबा ने कहा आगे चल करके मिल जाएगी, दूंगा, लेकिन अभी वो नहीं है किसी के पास। और ये आस लग करके कभी पुरुषार्थ भी नहीं करना कि मेरी दृष्टि से लोगों को साक्षात्कार हो जाए। हमको ये अनुभव कराना है कि हमारी इतनी अच्छी स्थिति हो जो दृष्टि के द्वारा रूहानियत का, सच्चे प्यार का, एक अपनेपन का अनुभव लोगों को, ये साक्षात अनुभव होना चाहिए, साक्षात्कार नहीं। कुछ ऐड करें कविता बहन, कुछ बताते।
दूसरे अर्थों में हम यूं कह सकते हैं कि मन में कोई इच्छा ना हो कि मैं किसी को कराऊं, बल्कि मन में एक ही इच्छा हो कि मैं बाबा की नजरों के सामने और बाबा मेरी दिव्य बुद्धि की नजर के सामने है, तो बाबा उन बच्चों को इन सेवाओं के लिए यूज करते हैं।
अभिव्यक्त वतन का थोड़ा सुना, अभिव्यक्त वतन वाला प्रश्न कविता बन, अभिव्यक्त वतन में बाबा से कैसे मिले?
हमारे आदरणीय राजू भाई जी बहुत मम्मा बाबा और वरिष्ठ दीदियों के, दादियों के निकटतम रहे हुए हैं, बड़े सारगर्भित अनुभव हम सबको शेयर कर रहे हैं। लेकिन अव्यक्त वतन के अनुभव के लिए भी हमारी देही अभिमानी स्थिति, देह से परे की स्थिति, हमारी चित्त की वृत्तियों में आत्म भाव समाया हो, हमारी दृष्टि में आत्मिक दृष्टि हो, व्यवहार में आत्मिक दृष्टिकोण हो, तो हम उस अव्यक्त भाव और अव्यक्त स्थिति से एक बाबा ही संसार है। जब इसे हम कर्म योग में प्रयोग करते हैं तो सेकंड भी नहीं लगता जो हम अव्यक्त वतन की सैर करते हैं और अव्यक्त वतन में बाबा से अपनी रही हुई कमियों को भरने के लिए भी बाबा वहाँ इमर्ज हमें करके उन शक्तियों से भर देते हैं और हम बहुत कम समय में कई वर्षों का, महीनों का अनुभव उस पल क्षण में आत्मा कर लेती है।
एक और प्रश्न सत्युग के बारे में है। सत्युग में जाने की 16 कला कही जाती है, लेकिन फिर जब त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, ऐसा बताते हैं, 14 कला हो गई, तो ये 2 कला कौन सी कम होती है और ये 16 कला की लिस्ट क्या है?
ये आप सभी संपन्नता संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं हैं। चंद्रमा की संपूर्णता से इसकी भेंट की गई है। जैसे फुल मून जब पूर्णमासी को होता है तो कोई भी जरा भी लकीर कटी हुई नहीं दिखाई देती है, चांद फुल दिखाई देता है, और धीरे धीरे दो दिन में उसकी थोड़ी सी कमी आ जाती है चांद के अंदर। कौन सी चीज उसमें से कट गई? कोई चीज कमी नहीं है, लेकिन रोशनी में कमी आ गई उसके अंदर। तो प्योरिटी की जो लाइट है जिसमें आत्मा संपन्न संपूर्ण है, वो 16 कलाएं माना सब विशेषताओं से भरी हुई है, कोई गिनती वाली नहीं, 16 ही नहीं है, जितनी जरूरत है आत्मा को सब प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर है। परफेक्शन को 16 कला कहा गया है, 100%। और हाँ, 16 आना 16 रुपया पहले जो होता था ना, पहले आना वाला, लेकिन चंद्रमा की कलाओं से इसकी भेंट की गई। 16 कला जब होता संपूर्णता आ जाती है तो पूर्णमासी, बस उसके बाद बढ़ेगा नहीं, और घटने लगेगा तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लाइट कम होती जाएगी। तो ऐसे ही जब त्रेता युग आता तो ऐसे नहीं दो चीजें कोई कम हो जाती, लेकिन प्योरिटी की जो परसेंट है देह के साथ पार्ट बजाते बजाते देह मान 8 जन्म 9 जन्म जो हुए हमारे सत्यु के अंदर, उसके बाद देह के साथ रहते रहते प्योरिटी की परसेंटेज में कम होने लगती। जो 2 बच्चे होते थे सत्रहता तक 3 हो जाते हैं शुरुआत। तो इसलिए वो प्योरिटी की परसेंटेज की कमी, वो हमारी कलाओं में कमी दिखाई गई है, बाकी दो कोई चीजें कम हो जाती ऐसा नहीं। क्या
रामचंद्र को तीर कमान दिखाया है?
तीर कमान इस संगम की पुरुषार्थ की स्टेज का प्रतीक है। इस समय पुरुषार्थ करते करते युद्ध में कोई आत्मा चली गई, संपूर्ण विजयी नहीं बनी, तो बाबा कहते हैं वो युद्ध करते करते विकारों पर जीत प्राप्त करते करते शरीर छूट गया, फिर उसको जो पद मिला उसके निशाने में तीर कमान। त्रेता में कोई तीर कमान देवताओं को होगा ऐसा नहीं है। ये संगम की संपूर्णता जितनी जिस आत्मा ने प्राप्त की है उसकी स्टेज सतयुग और त्रेता के अंदर वर्णन की गई। वहां मुरली दिखाई गई है कृष्ण को, और राम को फिर तीर कमान दिखाया गया है। मुरली धर बन करके गई आत्मा, मुरली से इतनी श्रेष्ठ सतो प्रधान बनी तो सर्व कलाएं आ गई, और युद्ध करते करते गई इसलिए त्रेता के अंदर उसको तीर कमान मिल गया। बाकी कोई स्थूल में तीर कमान उसको नहीं है, और मुरली भी कोई स्थूल में चीज हाथ में नहीं दी गई है, ये तो हम सब प्रतीक उसको दिखा रहे हैं।
ज्ञान का ही एक और प्रश्न है,
इसकी मैं और कुछ बोलना थोड़ा इस पर।
प्यारे बाबा की जो मुरली में हमें आज्ञाएं मिलती हैं, शिक्षाएं मिलती हैं, जो पुरुषार्थी बच्चे मुरली से सुनकर अपने में परिवर्तन कर लेते हैं वो सूर्यवंशी मुरलीधर बन जाते हैं, और जो मुरली की आज्ञा को शिक्षा को आज सुना कल सोचेंगे फिर करेंगे, तो सोचने और करने के बीच में जो टाइम गैप जाता है उसमें हमारी मन की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, और फिर जब हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी पावर में परिवर्तन आ जाता है, डिटर्मिनेशन विल पावर स्टेमिने में अंतर आ जाता है, जिसके कारण उस अंतर से हमें कई बार वो आज्ञा पालन करना मुश्किल लगता है, जिस मुश्किल की निशानी वो तीर कमान, और जिस सहजता की निशानी बाबा ने कहा और मैंने तुरंत किया इसकी निशानी मुरली होती है।
ज्ञान से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अपन दिखाते हैं, झाड़ में भी दिखाते हैं इस्लाम धर्म मुस्लिम, तो इस्लाम और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हम मानते हैं, लेकिन जबकि मुस्लिम्स कहा करते हैं कि इस्लाम धर्म है और उनको फॉलो करने वाले मुस्लिम्स कहलाते हैं, और जिसकी शुरुआत प्रॉफिट मोहम्मद ने की, और अब्राहिम के लिए हम कह सकते हैं टेस्टामेंट में जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें उनका नाम इब्राहिम का आया है, लेकिन क्या ये धर्म अलग अलग है, एक है, क्या कहें?
बाबा ने जो स्पष्ट किया है और आप सभी अगर पढ़ेंगे, हमारे पास वर्ल्ड ड्रामा का जगदीश भाई का लिखा हुआ बड़ा अच्छा बुक है, उसमें उन्होंने पूरा इतिहास एक एक धर्म स्थापक का लिखा है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले पहले इस्लाम धर्म इब्राहिम द्वारा स्थापित हुआ है, उस झाड़ के अंदर पहले लिखा हुआ सबसे पहला धर्म है। सेकेंड नंबर में बुद्ध है, थर्ड नंबर में क्रिश्चियंस है, और जो मुस्लिम कहलाने वाले हैं मोहम्मद से अंत बाद में आकर के जन्म लिया है, लेकिन उसमें उसी कैटेगरी की आत्माएं, जैसे देवता घराने वाली आत्माएं धीरे धीरे हिंदू कहला रही हैं, ऐसे जो पक्के मुस्लिम इस्लाम वाले हैं वो बहुत पक्के हैं, लेकिन बीच बीच में दूसरे धर्म स्थापक ने अपने अपने धर्म स्थापन शाखाएं निकाली हैं। इसलिए अगर आप इतिहास भूगोल पूरा जो दादियों ने जगदीश भाई जी ने लिखा है, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण उसके अंदर है शिया और सुन्नी की बात, और उसमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है कैसे इस्लाम धर्म स्थापित हुआ और उनके कौन बच्चे थे, दो शादियां कैसे की, इसके यहूदी हुए ये हुए, बहुत सारा डिटेल में है। इसलिए आप अगर ज्यादा स्पष्टीकरण इसके विषय में चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आप पुस्तक को जरूर पढ़ लें,
उसमें काफी डिटेल्स हैं जो बुक
बहुत डिटेल्स
है।
मेरे से कोई ने प्रश्न किया था तो मैंने पेज नंबर सहित उसको ये दिया था कि आप पढ़ लो,
उस बुक को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। योग के ऊपर कुछ सवाल है, अब हम ले लेते हैं शरीर स्थिति को। मैं 4-5 सवाल इकट्ठे आपको सुना देती हूँ ताकि जवाब इजीली मिल जाएगा। एक तो अमृत वेले उठते ही योग की शुरुआत कैसे करें और समापन कैसे करें, और दूसरी जो बात आई थी अपने पास शुरू में ही, अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति, ये स्थितियां क्या है, इनमें फर्क क्या है, और अभ्यास भी कैसे करना है और किस वक्त करना है, फायदा भी क्या होगा इन स्थितियों से, और कर्म करते हुए भी इन स्थितियों को कैसे अभ्यास में ले सकते हैं, सामने वाला भी अनुभव करे, मैं भी इनका अनुभव कर सकूं कि ये स्थितियां मेरे अंदर अभ्यास में चल रही हैं, दूसरे को भी महसूस हो।
बाबा ने योग को बहुत सरल शब्दों में याद कहा है, बच्चे मुझे याद करो बस, लेकिन ये भिन्न भिन्न स्थितियां जो हम सबके अभ्यास और पुरुषार्थ के अंदर आई हैं, कुछ अंतर शब्दों का ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर इतना नहीं है जिसमें आप उलझ जाएं कि आत्म अभिमानी बनेंगे तो देह अभिमानी के लिए क्या करना पड़ेगा। वास्तव में शब्दों का कुछ हेर फेर भी होता है, कोई देह अभिमानी बोलता है कोई आत्म अभिमानी बोलता है, लेकिन अगर इसका अर्थ हम निकालते हैं तो देही अभिमानी देह से रिलेटेड बातें हैं, जैसे स्त्री पुरुष का भान नेचुरल बना हुआ है, भूलता नहीं है जल्दी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दैहिक धर्मों के आधार से बटे हुए हैं, काला है गोरा है सुंदर है ये है, ये सब देह के आधार से हम एक दूसरे को देखते आए हैं, इसको बाबा कहता है ये देह अभिमान है, और इस देह अभिमान को मिटाने के लिए तुम देही अभिमानी स्थिति में रहो, माना आत्मिक स्थिति में रहो, ये सब आत्माएं हैं ये देह नहीं है, ये अभ्यास करो। तो देह के जो संबंध है, देह में जो हम बटे हुए हैं, दैहिक दृष्टि है दैहिक वृत्ति है, इसको परिवर्तन करने के लिए शब्द मिला है देही अभिमानी, और जितना आत्म अभिमानी स्थिति माना देही ही आत्मा है, देही माना आत्मा, लेकिन वो आत्मिक स्थिति जब कहा जाता है तो आत्मा के जो नेचुरल गुण है, शांति है प्रेम है आनंद है सुख है, ये जो आत्मा के नेचुरल गुण है वो गुण स्वरूप में आते जाए, तो ये बॉडी कॉन्शियस के साथ देह के साथ जो रिलेटेड बातें वो समाप्त हों, उसके लिए देही अभिमानी स्थिति है, और जो आत्मा के नेचुरल गुण है उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति है। मैं जहां तक समझता हूँ कि आत्मा के नेचुरल गुण उसके अंदर आते जाएं और देह की बातें सब विस्मृति में आ जाएं। बाकी जो व्यक्त और अव्यक्त स्थिति की बात है, क्योंकि व्यक्त माना ही देह भान, उसमें जब हम देह भान में रहते हैं तो व्यक्त बातें करते हैं, व्यक्तियों के बारे में चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, और जब अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो जैसे व्यक्त बातें भूल जाते हैं, इनमें हम जाते ही नहीं, देखते ही नहीं किसी को, जो हो रहा सब ठीक है। तो जितना जितना हम आत्मा का ज्ञान पाठ पक्का करते हैं, देही मान स्थिति में रहते हैं, नेचुरल है, व्यक्त भाव से परे हो जाते हैं, अव्यक्त स्थिति बन जाती है, और जब अव्यक्त बन करके इस देह को यूज करते हैं तो धीरे धीरे देह विस्मृति में हो जाते हैं, उसको कहते हैं अशरीरी स्थिति हो गई, अशरीरी स्थिति हो गई, निराकारी स्टेज बन गई, और निराकारी स्टेज के बाद बीज रूप बन गई, जो देह भान बिल्कुल समाप्त हो गया। तो नंबर वार पुरुषार्थ करते करते सभी स्टेजेस का अनुभव योगी आत्माएं करती हैं, इसलिए अलग अलग नाम दे दिए कि अभी मैं आत्म मन स्थिति का अभ्यास करूं, अभी देही मन स्थिति का अभ्यास करूं, अभी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करूं, लेकिन अभ्यास एक ही है और कोई अलग अलग नहीं है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास। माना इस देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास। और जब ये हम करते हैं तो सब बातें जो हमारी छूटती जाती हैं, छूटने के आधार से अलग अलग नाम मिल जाते हैं। देह मान छूटा, देह मानी बन गए, गुण आते गए, आत्म मानी बन गए, व्यक्त भाव समाप्त हो गए, अव्यक्त बन गए, फरिश्ता बन गए, और निराकार बिल्कुल एक बाबा में टिक गए तो निराकार स्टेज बीज रूप की स्टेज बन गए। बीज रूप स्टेज में रूह रिया नहीं होती। बीज के अंदर वैसे भी बीज आप लो तो उसके अंदर वृक्ष है ही नहीं, वो सब समाया जरूर है लेकिन वृक्ष नहीं है, उसे अंकुर नहीं है, बीज है ना वो। तो बीज रूप स्थिति के अंदर रूह रिहान नहीं है, बाबा से कोई वार्तालाप नहीं है। लेकिन जब हम वार्तालाप करते हैं, करते करते कहते मनन करते करते मग्न स्थिति होती है, और मग्न स्थिति लौलीन स्थिति ही बीज रूप स्थिति बन जाती है। तो पहले रूह रिहान करना जरूरी है, बेस है हमारा। पहले मनन चिंतन करें, ज्ञान चिंतन करें, फिर बाबा से रूह रिहान करके बीच वार्तालाप करें, और वार्तालाप करते करते जैसे लगन में आत्मा मग्न हो गई, और मग्न हो गई तो सब बातें भूल गई और बाबा ही दिखाई देने लगा। वो अनुभव का संकल्प होगा, शून्य नहीं है वो भी, जड़ता नहीं है, ये अनुभव का संकल्प है। जैसे मैं आत्मा बाबा के बीच में मर्ज हूं और वो शांति शक्ति आनंद उसके अंदर जैसे बैठा हुआ अनुभव है, इसलिए वो अनुभव के अंदर हम खो जाते हैं, ये बीज रूप स्टेज हो जाते हैं। सूक्ष्म
योग से ही रिलेटेड छोटा सा प्रश्न है। योग में अनुभूति नहीं होती है, बाबा से हम रोहरिहान करते हैं, वाइब्रेशन फील नहीं होता है, बैठे रहते हैं, क्या ये योग में गिना जाएगा? और दूसरा, ज्वालामुखी योग कैसे करना है? एक रिलेटेड क्वेश्चन
सुनाएंगे।
जैसा बहुत सुंदर तीनों स्टेजेस का भाई साहब ने विस्तार से बताया, लेकिन योग में यदि अनुभव नहीं हो रहा, मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही कि बाबा के समक्ष मैं पहुंची हूं, आत्मा बाबा की करंट मुझे महसूस नहीं हो रही, इसका मैं आत्मा पुरुषार्थ के आधार से ऐसा समझती हूं कि दिन भर की दिनचर्या में जब हम कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं तो आत्मा का अभ्यास इंद्रियों को भी नहीं है, जिसके कारण मैं आत्मा मन बुद्धि से बाबा के सन्मुख तो पहुंचती हूँ लेकिन वहाँ रुक नहीं पाती, अथवा रुक कर भी उस अनुभव को नहीं कर पाती। तो हम थोड़ा बाबा के पास वतन में पहुँचने के साथ साथ दिन भर की दिनचर्या में अपनी आत्मिक स्मृति, अपनी दैहिक इंद्रियों को भी कराएं। जब मैं आत्मा हाथ को यूज कर रही हूँ तो भी मैं अनुभव करने की कोशिश करूं कि मैं आत्मा इस हाथ को चला रही हूं, मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा इस गुण कला का कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूं। जब ये स्मृति हमें कर्म इंद्रियों के क्रियाकलाप में रहती है और फिर हम बाबा से मुलाकात करने जाते हैं तो वो स्थिति का अनुभव करना सहज हो जाता है और अनुभव हमको होता है।
अगर कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है तो अंदर अंदर कुछ चिंतन को चेंज करो। अनुभव नहीं हो रहा माना कहीं चिंतन भटक रहा है, इधर उधर मन जा रहा है, उस मन को नियंत्रित करके उसको अच्छे अच्छे संकल्प दो। बहुत भाग्य के चिंतन में आओ, स्वमान को याद करो, बाबा ने कितना मान दिया है, कितनी ऊंची पोस्ट पर बिठाया है, क्या बनाया है, ऐसे ऐसे खुशी के संकल्प इमर्ज करो। जितना नशे और खुशी के संकल्प आपके इमर्ज होंगे उतना योग सहज हो जाएगा, क्योंकि दो ही पंख हैं बाबा तक पहुंचने के। एक बाबा कहता है बहुत अंदर का आंतरिक नशा चाहिए और दूसरा खुशी चाहिए, बहुत हल्कापन चाहिए। जितना हल्का और खुशी हो, खुशी में होंगे उतना सहज आपको लगेगा मैं बाबा के पास पहुंच गया, योग सहज लग जाएगा।
मुरली की ही बात चल रही है तो एक सवाल आया है कि आज की मुरली में बाबा ने कहा विकर्म बहुत गुप्त रूप से बनते जाते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। दूसरा, शिव बाबा का यज्ञ 77 साल से चल रहा है, अव्यक्त मुरलियां जो हम सुन रहे हैं इसका मतलब 69 से जो चली हैं वो अव्यक्त मुरलियां हैं, और साकार मुरली जो चलती हैं वो कब से शुरू हुई? क्या हम ये कहें 69 से साकार मुरली चल रही है या 36 से चल रही है? 36 से जी साकार मुरली की पिछली पुरानी डेट नहीं डालते, अभी की तो आपके डेट डल के ही आती है, पिछली पुरानी डेट तो इतनी पुरानी आपको अभी मिलेंगी भी नहीं।
मुरलियों के विषय में मैं समझता हूँ इस क्लास को नहीं बताया क्या? नहीं बताया, हैदराबाद में बताया था, मेरे को याद है कि मैं बताया है। बाबा की मुरलियां जो चली, आप सबको पता हो कि 14 वर्ष तक बाबा कराची में जब रहे, हैदराबाद में रहे, तो उस समय प्रिंटिंग नहीं होती थी, क्योंकि परिवार के बीच में बाबा बोलते थे और बहनें अपने नोट्स ले लेती थी डायरी के अंदर, बाहर सेंटर तो थे ही नहीं जिनको छप करके दिया जाए भेजा जाए। तो एक ही परिवार के अंदर जैसे बात किया जाता है, उस समय माइक भी नहीं थे, कोई टेप रिकॉर्ड भी नहीं थे, तो बाबा जैसे बच्चों के आगे क्लास करा देते थे, मुरली चल जाती थी, जिनको जो अच्छा लगता था वो नोट्स ले लेते थे। लेकिन विधिवत मुरली वहां नहीं चलती थी, बाबा कई बार 2 बजे उठ करके लिखते थे, क्योंकि बाबा का निवास स्थान अलग रखा गया था और बहनों का निवास स्थान अलग था। बाबा का अपने लौकिक परिवार के बीच में अलग रहते थे, तो बाबा लिख करके फिर मम्मा के पास भेज देते थे और मम्मा को कहते थे इसको अध्ययन करके या तो आप सुनाओ या फिर कोई दूसरी दादियों को निमित्त बनी हुई को सुनाओ, पूरे क्लास को सुनाओ। तो बाबा की वो मुरली उस समय कोई ने प्रिंट नहीं की, कोई ने छपी हुई रखी गई, रिकॉर्ड नहीं की गई। तो 14 वर्ष तक का जो रिकॉर्ड उनकी डायरियों में था, तो इतना सारा बोझ, डायरियों का सबसे ज्यादा वजन होता है, जब वो भारत में 1950 में आने लगे तो वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने कहा आप सब सामान ले जा सकते हो, बहुत बड़ा स्टीमर बुक किया और 400 लोगों का जो सामान था, खाने पीने रहने का सब बिस्तर सहित, वो सब लाने के लिए इतना बड़ा स्टीमर वो तो फुल हो रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास इतना जो वजन वाला सामान है वो सबसे ज्यादा डायरियों का ही है, इसलिए आज बाबा कह रहा है कि द्वापर में जो शास्त्र बनेंगे उसका आधार क्या होगा, इसलिए जितनी तुमने डायरियां लिखी हैं वो सब इकट्ठी करो, और इकट्ठी करके एक बहुत बड़े टैंक में, बहुत बड़ा एक पेटी मंगाई लोहे की और उसमें सब भरवा दिया, और भरवा के जमीन खुदवाई और उसके अंदर दबा दिया कराची में, और कहा कि बच्चे ये जब द्वापर में भूकंप होगा ना तो निकलेगा और वहां जो जिसके हाथ में जाएगा वो इसी के आधार से शास्त्र बनाएंगे, इसलिए इसी आधार से सब बहनों की डायरियां नोट्स सब वहां दबा दिए गए, लाए नहीं। और फिर यहां भी 2 साल तक तो पांडव भवन ही, यही पांडव भवन माना, वहां ब्रज कोठी में ही रहते थे, वहां भी कोई प्रिंटिंग नहीं हुई। फिर धीरे धीरे जब बहनें बाहर निकली तो बाबा के नोट्स जाने लगे, फिर जब सेंटर्स खुलने लगे तो साइक्लो स्टाइल करना शुरू हुआ, लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे बाबा ने स्पष्ट किया, एक साथ सब बातें नहीं सुनाई। ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप, शिव बाबा का निराकारी बीज रूप स्टेज, ये जो ज्ञान पूरा स्पष्ट किया ना, वो धीरे धीरे 62-63 में स्पष्ट हुआ। फिर बाबा ने मुरली चलाई, बच्चों ने बहुत खजाना इकट्ठा किया है, लेकिन ये ABC का ज्ञान था, अभी जो परफेक्ट ज्ञान है, पढ़ाई जो है अब शुरू हो रही है यथार्थ। इसलिए जो पुरानी बातें हैं उन सबको बेचना नहीं है, रखना भी नहीं, इसको जला दो। तो सारा सारा जितनी मुरलियां इधर उधर से छप करके गई थी, जिन्होंने भी स्टोर की थी, बाबा ने उन सबको जलवा दिया। इसलिए जो मुरली बची, जब परफेक्ट हुआ ज्ञान, बिंदु का स्पष्ट हुआ, आत्मा का रूप, परमात्मा का रूप, घर का रूप, जब पूरा ज्ञान स्पष्ट हो गया, तब बाबा ने कहा कि ये मुरलियां अपने पास रखो। तो 63 से लेकर के 69 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड 5 साल का टोटल जो अभी तक रिपीट हो रहा है, पूरा ज्ञान जो स्पष्ट है वही 5 साल का है। वो कुछ फिर उसके बाद टेप भी हुई, मशीनें आ गई, टेप रिकॉर्ड के अंदर मुरलियां रिकॉर्ड हुई, वो भी बहुत थोड़ी हैं, लेकिन 5 साल की मुरलियां ही रिवाइज होती हैं। बाकी प्रश्न उत्तर उसमें एडिशन है, वरदान एडिशन है, स्लोगन सार जो भी आप देखते हैं, ओम शांति से नमस्ते तक की बाबा की ओरिजिनल मुरली है। उसके ऊपर और नीचे ब्राह्मणों की सुविधा के लिए जो थोड़ा समय दे सकते हैं, नौकरी पड़ जाते हैं या कोई को सार समझने की जरूरत है कि इसका एसेंस क्या है, वो नीचे ऊपर क्वेश्चन में, सार में, धारणा में लिखा जाता है, वो मैं ही लिखता हूँ। इसलिए ये सब बातें शुरू से लेकर के बाबा ने ऐसी मुरली सुनाई जो ओम शांति से नमस्ते तक की है, और वो 5 साल की ही मुरली है। बाकी कभी कभी दादियां भी जो छिपा के लाई थी वो रतन, कोई कोई के पास वो बच गई थी, अभी मुझे अगर मिलते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं तो बीच बीच में कहीं न कहीं कोई मुरली सार में एडिशन कर देता हूँ। इसलिए कोई कोई को लगता है नई चीज मिल गई आज, क्योंकि वो एडिशन उस समय की कोई मिल जाती है मुरलियां हमारे हाथ में तो अच्छी लगती है कि सब ब्राह्मणों के काम की चीजें हैं, तो कहीं न कहीं मुरली के नीचे ऊपर एडिशन में आ जाते हैं। 5 साल के बाद रिपीट होते, सर्किल 5 साल का है, बाकी कोई एक दो मुरली आगे पीछे निकल आती है और एडिशन हो जाते हैं। समझ गया मुरली के बारे में? और कोई क्वेश्चन?
और बाबा ने मुरली में कई बार कहते बच्चे इसी यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलेगी, और इस यज्ञ के द्वारा ही सत्य की सृष्टि की स्थापना भी होती है। क्या रहस्य है ये स्थापना और विनाश?
आप सबने भक्ति काल में भी सुना होगा, शंकर को तपस्वी रूप दिखाते हैं और तपस्या के आधार से कहते हैं जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है। तो हम सब जो तपस्या कर रहे हैं उससे हम अपने पुराने संस्कारों का भी नाश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं उससे बुराइयों का नाश हो रहा है। विनाश किसका होगा? अविनाशी सृष्टि का तो नहीं होगा ना? सृष्टि तो अविनाशी है, अनादि है, तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, उनका अंत हो जाएगा। तो कलयुग का अंत करने के लिए तपस्या है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम तपस्वी बच्चे, जब से स्थापना हुई तपस्या शुरू की तो विनाश ज्वाला इससे निकली। माना ये जो तपस्या के वाइब्रेशन है ये विनाश कराएंगे आसुरी वृत्ति और आसुरी सृष्टि का, समझ गए? और ये जब विनाश होगी तो सत्युग आएगा, इसलिए सत्युग की स्थापना इसी से होगी। इसलिए विनाश भी कल्याणकारी है। तो अति का अंत होता है, सृष्टि का अंत नहीं, जो पापों की अति हो चुकी है उसका अंत हो जाता है। इसलिए उस अंत के लिए हम सब तपस्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं कि हमारे भी बुराइयां नष्ट हों और संसार की भी बुराइयां नष्ट हों।
कालचक्र के अनुसार हम देख रहे हैं कि कलयुग का अंत तो होना ही है और सतयुग की प्रारंभ होनी है, और हम संगम युग पर जो बच्चे हैं उन्हें ये अति निश्चय विश्वास और श्रद्धा है कि प्यारे बाबा मेरी पुकार सुनकर मुझे सतो प्रधान बनाने आए हैं। सतो प्रधान बनना माना नई दुनिया की स्थापना में सहभागी बनना और नई दुनिया को नजदीक बुलाना। जब नई दुनिया नजदीक आएगी तो बट नेचुरल पुरानी दुनिया जो तमो प्रधानता की है, जो अति में जा रही है बॉडी कॉन्शियस की, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। तो मेन हमारी जो योजना है, बाबा आया हुआ है, हमें अपने को रिज्यूविनेट करना है, पांचों विकारों से, पांचों आत्मिक सद्गुणों में परफेक्ट करना है। तो नेचुरल है बुराई का विनाश, अर्थात इस यज्ञ, यज्ञ शब्द संस्कृत का है, जो यह माने जो, गे माने जाना। मैंने जो संगम युग पर जाना है होल ड्रामा साइकिल को, उसको जानकर जो हमने सत्यता को धारण किया है उसके आधार से नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय, पॉजिटिविटी स्थापित, उसी को प्यारे बाबा अपनी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि इस विनाश ज्वाला से यज्ञ विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, उसमें विनाश ज्वाला, यज्ञ से जो ज्वाला निकलेगी विनाश ज्वाला का निमित्त बनेगी और स्थापना का निमित्त बनेगी, मैं ऐसा मानती हूँ।
सत्युग त्रेता में तो कोई पूजा होती नहीं, सत्युग त्रेता पावन दुनिया, भक्ति वहां है नहीं, लेकिन फिर भी गोपेश्वरम में कृष्ण को पूजा करते हुए दिखाया शिव की, रामेश्वरम में राम की, राम ने शिव की पूजा की। इसका ये आध्यात्मिक राज क्या है, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही पूजा नहीं करते थे, यहाँ कैसे की?
यादगार में भक्तों ने अपने इष्ट देवों को भी वैसा ही बना दिया जैसे वो खुद करते हैं, बाकी उनको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं थी, वो हम सब जानते हैं। लेकिन न युद्ध हुआ ऐसा कोई जिसको राम ने रावण पर जीत पाने के लिए, जब मैं वहां गया था रामेश्वरम में, तो खास स्थान देखने के लिए गया जहां वो पूजा की है शिव की, वहां एक शिवलिंग बना दिया है मंदिर, तो वहां पर कहते राम ने यहां पर पूजा की थी, यहां ही पुल बांधा था, पुल भी अभी तो दब गया है सागर के पानी के अंदर, लेकिन कहते यहां ही पुल था। तो ये सब यादगारें हैं और भक्तों ने अपनी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। बाकी राम को कोई ऐसी रावण से युद्ध करनी पड़ी, उनकी सीता चोरी हो गई, ऐसी तो संगम की यादगार कहानियां, संगम की कुछ घटनाएं त्रेता में और सत्युग के अंदर हम लोगों ने भक्ति काल के अंदर दिखाई है, लेकिन वो संगम की सब बातें हैं।
काल चक्र के अनुसार जैसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की सभी बातें मिक्स हो गई हैं, और मिक्स होने के कारण जब द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई तो श्री कृष्ण की आत्मा ने भी शिव की पूजा की, श्री राम की आत्मा ने भी शिव की पूजा की, लेकिन वो सब मिक्स हो गया। हम बच्चे भी वो भक्ति काल वाले श्री कृष्ण और श्री राम को सत्युग त्रेता वाला मान लेते हैं। आत्माओं ने तो शिव की पूजा की, लेकिन सतयुग त्रेता के तन में, श्री कृष्ण के तन में और श्री राम के तन में नहीं की, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण और श्री राम की आत्मा ने दूसरे तन में शिव की पूजा की, जिसका यादगार भगत लोग मिक्स करके गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कनरस उसका लेते रहते हैं।
एक बहुत लाइट सा प्रश्न बीच में पूछ लेते हैं कविता बहन। किसी कुमार या कुमारी का है शादी, माँ बाप को तो समझा सकता हूँ, लेकिन कोई ऑफिस में पूछे, दोस्त पूछे, ऑफिसर पूछे, उनको क्या जवाब देना चाहिए? माँ बाप को तो फिर भी कन्वेंस कर सकते हैं, लेकिन साथियों को क्या जवाब दें, दोस्तों को क्या जवाब दें? झूठ भी नहीं बोलना चाहता, अपने प्रश्न में अपने आप जवाब भी दिया हुआ कि झूठ भी नहीं बोलना है, तो फिर क्या बोलना है भाई?
हमारे सामने इतने सारे कुमारों की मिसाल उदाहरण है। यदि कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा है और मेरे लिए ये प्रश्न बन गया है, तो मुझे आवश्यकता है परमात्मा से कंपेनियनशिप के रिलेशन को और ज्यादा बढ़ाने की। दूसरे प्रश्न करें वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये प्रश्न बन रहा है तो मुझे परमात्मा पिता से अपनी कंपेनियनशिप को बढ़ाना होगा, और जब मेरी कंपेनियनशिप होगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ शादी दो बार नहीं होती, शादी का जिंदगी में एक ही बार होती है, और वो मेरी सुप्रीम साजन से, सुप्रीम कंपेनियन से शादी गठबंधन जीवन का हो चुका है। ये सत्यता से, दृढ़ता से, निश्चय से और अनुभूति के आधार से जब हम किसी को प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो हमारे चेहरे को देखते हैं, वो हमारे मस्तक को देखते हैं, वो हमारे नैनों को देखते हैं। यदि कहीं मेरे बोल और सोच में अंतर होता है वो मेरे चेहरे पर आता है। यदि मेरा पक्का डिटर्मिनेशन उस कंपेनियन से हो चुका है तो कहीं मार्जिन नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछने वाले मेरे क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाई ना हो अथवा मैं उन्हें सेटिस्फाई ना कर पाऊं, बल्कि मुझे आवश्यकता है जहां कहीं उस रिलेशन में वैक्यूम है उसको फुलफिल करने की।
शायद मिल गया है सबका जवाब। आगे राजू भाई ने तो एक ही शब्द में आंसर इधर से बैठे बैठे दे दिया, शादी माना बर्बादी।
कुमार कुमारियों के लिए तो बर्बादी ही है।
स्व सेवा, स्व परिवर्तन और सेवा, दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट वैल्यूबल है? और इसमें एक और सवाल है, स्व परिवर्तन या स्वसेवा विश्व सेवा हम साथ साथ कर सकते हैं क्या? एक और इसी में सवाल है, समझो सेवा के सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा है या फिर स्व परिवर्तन के सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा है, किसको पद ज्यादा मिलेगा, ऊंचा पद किसको मिलेगा, स्व परिवर्तन वाले को या सेवा वाले को?
सेवा का आधार है स्व परिवर्तन। अगर स्व परिवर्तन नहीं है और सेवा की जाती है तो उसकी मार्क्स क्या होंगी, आप ये सोच सकते हो। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं इस समय के अनुसार सेवाएं तो अपने आप बाबा करा रहा है, सेवाओं के पीछे अभी अधिक भागने की जरूरत नहीं है, अपनी स्व स्थिति अच्छी बनो। स्व स्थिति अगर अच्छी होगी तो अपने वाइब्रेशन से, अपने बोल से, अपने कर्मों से लोगों की सेवा अपने आप होगी। लेकिन अगर स्व स्थिति डामाडोल हो रही है और दूसरों को सिर्फ ज्ञान सुना रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय के अनुसार स्व स्थिति स्व चिंतन से अच्छी बने और फिर स्थिति के आधार से जो बाबा सेवा दे रहा है वो अपने आप अच्छे से अच्छी होगी।
इसमें एक एडिशन दो लाइनों की मैं कर देती हूँ। कई बार हम लोग स्लोगन्स प्रभात फेरी वगैरह में बोलते हैं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारा यहाँ का स्लोगन भी है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन द्वारा स्व परिवर्तन है ही नहीं। तो हम बदलेंगे तब जग बदलेगा, हम जागेंगे तब जग जागेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है जो कई बार कईयों को शंका में डालता है, ड्रामा। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है तो क्या ये भगवान की तरफ से किया गया भेदभाव नहीं है? कोई कमजोर है तो बेचारा हर कल्प में कमजोर रहेगा, कोई अच्छा है तो हर कल्प में अच्छा ही बनेगा, मेरा क्या होगा?
इसके लिए बाबा पढ़ा रहा है ना कि अच्छे बन जाओ, क्यों प्रश्न कर रहे हो? क्योंकि ये ढाल उस जगह पर यूज करनी है जहां कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ढाल दिया है बाबा ने, ढाल हर जगह यूज नहीं की जाती है। आप सभी यहाँ आए हैं, आप सबको पता है मुझे जाना भी है और उसके लिए आपने सब प्रकार की तैयारी की है, टिकट भी बनाई है, रिजर्वेशन कराई है, कोई ने फ्लाइट की टिकट ली है, सब कुछ किया, सब तैयारी है और जाएंगे उसके पहले पैकिंग भी कर रहे हैं, जाना है। अगर आप सोच ले हमको जाना ही है, ड्रामा में निश्चित है हम जाएंगे ही, और आप बैठ जाएं यहाँ पर कुछ नहीं करें, कोई तैयारी नहीं करें, क्या होगा? पश्चाताप होगा ना। तो पहले से पुरुषार्थ भी ड्रामा के अंदर नूंधा हुआ है और वो करना ही हमें निश्चित है, करना ही पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें ताकि जो कुछ रिजल्ट निकलेगी, अगर मान लो आज आप जा रहे हैं कोई कारण से कल से हड़ताल हो जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी में तो नहीं पीछे हुए, आप तैयारी फुल करेंगे, बाकी कोई कारण बन गया और नहीं ट्रेन टाइम पर आई तो कहेंगे ड्रामा था, हमको सोचना नहीं है, निश्चिंत फुल स्टॉप, ड्रामा में नहीं था, आज नहीं तो कल जाएंगे। तो उस समय ड्रामा को यूज करना है जहां पर बहुत हलचल पैदा होती है। ऐसे पहले से नहीं सोच लेना ड्रामा में होगा तो जाएंगे, ड्रामा में होगा तो पैकिंग कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो टिकट खरीद लेंगे, ड्रामा में होगा तो खाना खाएंगे, फिर थाली आएगी तो कहेंगे ड्रामा में होगा तो मुंह में चली जाएगी।
क्या ड्रामा में तो शुरू में भट्टी बननी थी, अब अंत में बनेगी क्या? ड्रामा में तो शुरू में था 14 साल भट्टी रही, अब अंत में बनेगी क्या?
बनी बनाई है, भट्टी में तो बैठे हैं सभी। वो अलग प्रकार की भट्टी थी, उसके कई राज थे, उनको फाउंडेशन मजबूत करना था और उस समय इतने हंगामे के बीच में हो रहा था सब यज्ञ स्थापना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का कितना जबरदस्त झगड़ा था, उसमें अगर भट्टी नहीं होती तो ये कोई टिकी नहीं पाते, मजबूत ही नहीं बनते। और अंत समय भी जब ऐसा आएगा जब कोई सेवाएं नहीं हो सकेंगी, हम क्या करेंगे? भट्टी करेंगे, बाबा के साथ खेल करेंगे और क्या करेंगे?
हम देखते हैं कि हम सभी को जो 7 दिन का कोर्स मिलता है, ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है, उसमें हर एक आने वाले को 3rd डे के लेसन में यही एम ऑब्जेक्ट मिलता है कि नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। कोई दूसरा एम ऑब्जेक्ट आज तक किसी कल आने वाले को भी नहीं मिलेगा, तो सबको एम ऑब्जेक्ट वही है। दूसरा हमें सोचना है कि ड्रामा कहते किसे हैं। ड्रामा में एक स्टोरी होती है, एक्टर होते हैं, एक्टर्स का रोल होता है, वो रोल को प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब उसको स्टेज पर प्ले करते हैं उसका नाम होता है ड्रामा। यदि वो सारा क्रियाकलाप एक्शन ना हम करें तो उसको हम ड्रामा नहीं कहेंगे। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि हमें प्लान करना है, प्यारे बाबा ने कहीं भेदभाव नहीं रखा, हर एक को एक सा ही 7 दिन का ज्ञान दिया है, एक सा ही पुरुषार्थ बताया है, लेकिन उसके अनुरूप जब हम कर्म में आते हैं, उस कर्म में आने से जो नंबर वार हम अपना बनाते हैं उससे हम आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं, बच्चे आज आप समझ रहे हो कि मैं कम पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो बाबा क्या उत्तर देते, कोई बात नहीं, कल से अच्छा करो। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि आज कम है तो उसे ड्रामा पर छोड़ दो। बाबा कहते अच्छा बच्चे महसूस किया, कोई बात नहीं, बाबा को सच बताया, कोई बात नहीं, कल से फिर अच्छा करो। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ और तालब्ध को सामने रख के जो हम कर्म करते हैं उसके पश्चात हमें ड्रामा की ढाल को यूज करना है।
अब मेरा आप सबसे सवाल, अभी तक तो आप पूछ रहे थे राजू भाई और कविता बन से, मेरा आप सबसे सवाल है कि अभी तो आज तो किसी को भी ब्रेक नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। तो अब हम आते हैं एक और प्रश्न पर, क्षमा का मतलब क्या है और क्षमा किसको करना है, क्षमा का मतलब क्या है और क्षमा करना है तो किसको करना है, कैसे करना है, किसको करेंगे और कैसे करेंगे?
हमेशा क्षमा बड़े करते हैं छोटों पर, बाबा दादियां अगर हम कोई भूल करते हैं, कोई बात होती है महसूस करते हैं तो कहते बच्चे भूल जा, क्षमा कर दिया। वास्तव में हम लोगों को अधिकार नहीं है किसी को क्षमा करने का, लेकिन क्षमा करने का मतलब है बहुत दया भाव रहम भाव। जितना जितना आत्मा रहम भाव दया भाव धारण करती है तो पहले अपने आप में जो कमियां कमजोरियां हैं उनको महसूस करके उनको परिवर्तन करना भी क्षमा करना है, और फिर दूसरी आत्माएं जो ऐसी महसूस करती हैं अगर उनकी कोई गलती है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है और वो कारणे देहमान के कारण महसूस नहीं करती थी, इनको इस समय टच होता है, वो आकर के कहती मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे गलती हो गई, तो बड़ों का काम है उस समय उनको माफ करना, क्षमा कर देना ताकि वो भूल जाएं, उनकी बातों को लेकर के उनसे भय नहीं रखना, उनसे दुश्मनी नहीं रखना। लेकिन अगर कोई महसूस कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उनको उसी समय, उसने सारी किया तो हम बड़ी देर से कहें ठीक है कोई बात नहीं, आगे के लिए नहीं करना, बस। बाबा भी ऐसे क्षमा करता है, बच्चे अभी तक हुआ, आपने सुनाया, बाबा को बताया, अभी फिर नहीं करना, अभी इस बात को भूल जाओ, ये हो गया उनका क्षमा करना। तो ये भी एक वास्तव में क्षमा करना भी दूसरों को शिक्षा देना है, इसलिए अगर कोई ऐसा किसी ने किया हो, माफी मांग रहा हो तो हमारी बड़ी दिल हो ताकि हम उसको क्षमा कर सके।
एक बार किसी ने कहा था कि अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो तो दो ही तरीके अपनाओ, जहां गलती की है वहां क्षमा मांग लो और जिन्होंने गलती की उनको क्षमा कर दो तो सुखी रहेंगे। जिन्होंने गलती की है उनको क्षमा कर दो, आपने गलती की है तो क्षमा मांग लो, सुख की यही विधि है। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, साइकिल संगम युग से शुरू होता है या सतयुग से शुरू होता है? नारायण पहले होगा या ब्रह्मा पहले होगा?
वैसे तो बाबा साइकिल कहता है 111 से शुरू होगा, सतयुग से ही शुरू होगा, जब श्री नारायण गद्दी पर बैठेगा, जन्म से भी नहीं कहता, गद्दी जब शुरू होगी तब से साइकिल शुरू करता है, 5000 वर्ष वहां ही पूरा करता है करके, इसलिए 111 सतयुग में जब श्री नारायण की गद्दी शुरू होगी तब से सर्किल शुरुआत कहा जाएगा। हम अभी उसी के अंदर चल रहे हैं। 5000 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए, पूरे होंगे नारायण का गद्दी शुरू होगी और शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम सब अभी 5000 वर्ष के सर्किल में ही हैं। इसका जवाब कोई दूसरा? तो पता तो है ना, बताया तो बाबा ने, सब बताते हैं, मेरे से ही पूछ रहे हो। बाबा तो कहता ना संगम युग 100 साल का है, अब 77 पूरा हो गया, 23 साल और बाकी रह गए इसमें, बाकी उसमें कैसे जन्म होगा श्री कृष्ण का, कैसे भी परिवर्तन होगा वो सब हम देख रहे हैं, हो रहा है, अब कैसे जल्दी जल्दी होगा, और डेट नहीं बताई बाबा ने, इसी डेट में हो जाएगा, लेकिन होने की तैयारी है। अचानक कुछ भी हो जाएगा, अचानक अचानक बाबा रोज पढ़ा रहा है।
इस प्रश्न में नहीं जाएं, कैसे होगा क्या होगा वो तो हम सब मिल करके देखेंगे। इस प्रश्न में कृष्ण का जन्म कब कहाँ?
नहीं नहीं, 100 कहाँ से आ गया, 105,000 के अंदर ही है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद पुरुषार्थ की मार्जिन नहीं रहेगी, परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा विनाश होगा, उस विनाश के समय हाहाकार होगा, उसमें कौन विशेष बैठ के तपस्या करेगा जी? बर्थ
शरीर छोड़ के चले आते हैं, जन्म लेते हैं सेकंड ब्राह्मण बर्थ,
कई यहाँ ऐसे जन्म लेते हैं जो फिर से ज्ञान में आ जाते हैं, वो तो चलेगा जी।
मम्मा
का बर्थ जो है एडवांस पार्टी वाले ज्ञान में नहीं आएंगे, फिर से वो ज्ञान लेने शुरू नहीं करें, उनकी स्टेज पूरी हो गई, वो नई दुनिया की तैयारी के लिए गए हैं, इसलिए बाबा उनके जन्म के बारे में बता नहीं देगा कि यहाँ जन्म लिया उन्होंने। एडवांस पार्टी माना सतयुग की दुनिया की रचना के लिए ऐसी आत्माएं जा रही हैं जो सतयुग के देवी देवताओं को ऊपर से उतारेंगी, जन्म लेंगे। सतयुग के 50 वर्ष नहीं कहेंगे, 111 से शुरू होगा सतयुग, तो ये बीच का ही समय है संगम का ही।
कृष्ण के बाद लक्ष्मी नारायण कब बनेगा, कितना समय शादी कब
देखते हैं।
वैसे हमें इन प्रश्नों में नहीं जाना चाहिए, ये बाबा ने कई बार कहा सतयुग की रीति सतयुग में ही मालूम पड़ेगी।
अभी क्या है, बाबा ने कोई एग्जैक्ट नहीं बता दिया कि 25 साल में स्वयंवर होगा या 30 में होगा, और मैं बताऊंगा तो कहेंगे इनकी मत अपनी है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इसलिए कोई कीमतों में नहीं जाओ, जब बाबा बताएगा तो हम बता देंगे, आप छिपाएंगे नहीं आपसे।
और वैसे भी आप देखते हैं किसी घर में शादी 20 वर्ष में होती, किसी की 25 वर्ष में भी होती, आज के समय में भी किसी की 30 वर्ष में भी होती, तो ऐसे हम इन बातों में ना जाएं। हाँ, कृष्ण स्वयंवर के बाद नारायण बनते, बस
क्यों युद्ध कर रहे हो, सहज पुरुषार्थी बनो।
आप कहाँ आना चाहते हैं, त्रेता में आना चाहते हैं या सत्युग में? जब नहीं आना चाहते त्रेता में तो हम सत्युग का पुरुषार्थ करें, अर्थात विजयी बने, सफल बने, हमें लक्ष्य भी वही रखना है, इतना ऊंचा ही रखना है। आगे चलते हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपना सवाल और उसका जवाब भी खुद ही जानते हैं, लेकिन एक सवाल आया है, धर्मराजपुरी सूक्ष्म वतन में होगी या कहीं और होगी या यहाँ होगी? मैं समझती हूँ आप ही सब जवाब दे सकते हैं, कहाँ होगी पक्का?
आत्मा जब शरीर छोड़ती है उस समय कुछ दृश्य उसके सामने ऐसे इमर्ज होते हैं जैसे धर्मराजपुरी है, जैसे कहते हैं यमदूत आए, काले काले थे, भयानक थे, क्या था वो, उनकी कमजोरियां ही उनके सामने यमदूत बन करके आती है, जो उन्होंने किया है वो सामने स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और उसके बाद उनको महसूस होता है ये मैंने बहुत गलती की, बहुत पाप किए, जैसे उसकी मुझे बहुत कड़ी सजा मिल रही है। बाबा कोई सजा देने के लिए नहीं आता, लेकिन अंतिम समय शरीर छोड़ने के समय ही वो सब साक्षात्कार हो जाते, और थोड़े समय में भी अनेक जन्मों का ऐसे लगता है हिसाब चुक तो हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार का वही समय है जब आत्मा शरीर से निकलने लगती है। वो ट्रिब्यूनल तो बैठेगी ही जरूर, क्योंकि ये जो नियमित आत्माएं हैं वो ट्रिब्यूनल के रूप में मना जज के रूप में हमारे सामने दिखाई देंगी कि देखो इन्होंने भी मुझे कहा था, इन्होंने भी मुझे सिखाया था, ये भी मुझे बताया, तो वही हमारे लिए ट्रिब्यूनल होगी। कोई ये नहीं निमित्त यही बनेंगे, लेकिन जो आपके निमित्त हैं, जिनके द्वारा आपने पढ़ाई की है, जिनके द्वारा आपने गाइडेंस लिए हैं, वही आपके लिए ट्रिब्यूनल वाले हेड्स बन जाएंगे कि देखो हमने इस समय कहा था, और आपको भी लगेगा दीदी ने मुझे ये कहा था लेकिन मैंने नहीं माना, तो वो ट्रिब्यूनल जैसे हो गई आपके लिए। बाकी कोई अलग से ट्रिब्यूनल बैठ करके और वो पेशी हो रही है, केस हो रहा है जैसे दुनिया के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा।
कई बार आज भी अपन गलती करते हैं और फिर धीरे से कभी रियलाइजेशन होती है तो आपको अपनी बातें याद आती है, फला व्यक्ति ने भी कहा था, उस व्यक्ति ने भी कहा था पर मैंने स्वीकार नहीं किया। आज भी रियलाइज होता है तो आपके अंदर वो जागृति महसूसता आती है। ज्ञान में आने के बाद भी कई बार भक्ति के संस्कार काम करते हैं, तो भक्ति करें या ना करें, माँ बाप को खुश करने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए कई बार हम करते भी हैं, भक्ति भी करते हैं, वो ठीक है या गलत है?
कोई के आगे अगर कोई बंधन है, ऐसा बहुत बड़ा बंधन है, तो दिखावा करने के लिए बाबा ने छुट्टी दी है। दिखावा ही है, करना पड़ता है कई माताओं को, अगर नहीं करते हैं तो घर में झगड़े होते हैं, लोग समझते हैं तो नास्तिक हो गए। तो बाबा कहते हैं जब तक उनको ज्ञान का तीर लगे, जब तक वो समझें, तब तक आप अगर कुछ कर भी रहे हो तो याद तो शिव बाबा को ही करना है। दिखावे में हम घंटी बजा देते हैं, दिखावे में आरती भी उतार देते हैं, दिखावे में तिलक भी लगा देते हैं, उसमें क्या जाता है? हैं तो हमारे ही पूर्वज और हम ही तो ये थे जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो बहुत निश्चय और नशे से खुशी खुशी से दिखावे से कर देना चाहिए ताकि वो लोग नाराज न हो। बाकी बाबा कहता बच्चे दो नाव में पांव नहीं रखना, दो नाव में पांव माना भक्ति भी चल रही है, ज्ञान भी चल रहा है, लेकिन भक्ति माना भावनाएं, जो भावनाएं हैं वो बाबा में ट्रांसफर कर दो, बस दिखावा करने की फिर जरूरत नहीं। जो पक्के हैं, जो बाबा के बच्चे जिनके आगे कोई बंधन नहीं है, उनको वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब ड्रामा में नूंद है, बाबा कई बार कहते हैं सब ड्रामा में नूंद है। आत्माओं का आवाहन करना माना उनके जो पास्ट के संस्कार हैं वो मर्ज होते हैं, आकर इमर्ज हो जाते हैं यहाँ जी। जरूरत आत्मा कोई छोड़ के शरीर नहीं आती कहीं से भी, हाँ तो वो आवाहन करते हैं आत्माओं का, जिनके साथ जिनका संबंध होता है ब्राह्मणों में कई आत्माओं का आवाहन करते हैं, वो आत्मा शरीर छोड़ करके नहीं आती जिसने शरीर लिया है, लेकिन उनके संस्कार कई बार उन आत्माओं के अंदर इमर्ज हो जाते हैं। जो संस्कार गए हुए आत्मा के हैं, बाबा कहता हर एक आत्मा का अपना संपूर्ण स्वरूप भी है, तो वो आत्मा तो शरीर छोड़ के नहीं आएगी जिसने जन्म ले लिया, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं।
संस्कारों की बात शुरुआत हुई, कह रहे कुछ संस्कारों की बात शुरू हुई है, तो संस्कार परिवर्तन कैसे करना है? और हमें तो यही मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा संस्कार मेरा ठीक नहीं है जिसको परिवर्तन करना,
तो क्या परिवर्तन करें? जब मालूम ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ऐसा है कि जब कोई शीश महल के आगे जाता है ना, तो सब दाग दिखाई देने लगते हैं। शीश महल के आगे तो जाना पड़ेगा, तो बाबा कहता दर्पण में जब आते हो तो मुरली इतना सुंदर दर्पण है, उससे भी अपने सब दाग पता चल जाते, ये अभी तक मेरे में है, ये संस्कार है। और एक बड़ा अच्छा दर्पण बाबा का कमरा है, बाबा बैठा है सामने, जाते ही इधर के विचार उधर के विचार सब कुछ उसी समय आते हैं, योग में बैठते ही सब बातें आने लगती, जो संस्कार होते हैं वो सब मर्ज से इमर्ज हो जाते हैं आकर। तो पता तो चलता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, योग में भी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, पुरुषार्थ में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुशी का अनुभव करने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने का अनुभव नहीं कर देते, तो ये क्या संस्कार ठीक है? जब रियलाइज करता है कोई आत्मा, समझ तो मिल जाती है मुरली से, फिर महसूसता होती है ठीक नहीं है, उसके बाद उसको जरूरत है दृढ़ता की, बहुत संकल्पों में दृढ़ता, ये नहीं होने दूंगा, और उसके लिए फिर चाहिए तपस्या। तपस्या के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, तब वो संस्कार चेंज होता है। इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, नहीं चलता रहता। 10 साल ज्ञान में चले हैं, वो संस्कार जैसे का तैसा ही है, कोई चेंज नहीं होता। जगदीश भाई ने किताब लिखी थी, संस्कार तो ऐसे हैं जैसे कुछ कुत्ते की पूंछ, पाइप में डाल दो 10 साल तक पाइप में पड़ा रहे और फिर पाइप हटा लो तो वैसे टेढ़ी की टेढ़ी है। तो संस्कार भी ऐसे ही है, वो टेढ़े के टेढ़े रहते हैं। अब उसके लिए योग की अग्नि चाहिए, अग्नि के बिना वो चेंज नहीं होते। पावरफुल याद, बाबा एक बाबा दूजा न कोई, तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता।
जिसे बाबा कहते हैं बहुत काल का पुरुषार्थ, अपनी एक छोटी से छोटी कमी पर भी बहुत हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन एक तो पता चल रहा है ना कि ये मेरा ब्राह्मण जीवन का संस्कार आत्मिक गुणों के अनुसार मेरी नेचर नहीं है। ये जिसे मैं मेरी नेचर कह रहा हूँ, ये मेरी 63 जन्मों वाली नेचर है, फिर मेरी मूल नेचर जो आत्मिक कॉन्शियस सोल कॉन्शियस की नेचर है वो नहीं है। जब ये मुझे समझ में आता है तो छोटे सी बात के लिए, छोटे सी कमी के लिए मैं लंबे समय तक अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करूं, तो वो एक कमी नहीं जाती, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो अनेक कमियां हैं वो भी अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार हम गीता में तो कहा गया है कि अपने शत्रु को शूली पे चढ़ जाए और माफी मांगे तो भी उसे क्षमा न करो, अर्थात ये छोटी छोटी कमियां, बड़े बड़े तो हम ब्राह्मण अपनी कमियों को पकड़ लेते, निकाल लेते और छोड़ देते, लेकिन अंदर जो बैठे हुए हैं 63 जन्म की हमारे संस्कार, उन्हें हम खोजकर इस प्रकार सतत प्रहरी बनकर निकालें, ताकि वो मेरी अविनाशी कमाई जो मैं लंबे समय से अर्जित कर रहा हूँ, वो एक छोटी सी बात मेरी सारी कमाई को खलास ना कर दे। तो लंबे काल का पुरुषार्थ हमें सतत करना होगा। तो जो भाई साहब ने बताया वो मेरा संस्कार सदा के लिए 21 जन्मों के लिए बदल जाएगा।
संस्कार परिवर्तन के लिए मुख्य बात आई है अटेंशन, अपने ऊपर स्वयं अटेंशन रखें। सड़क से गुजरते हैं ना तो वहां पे भी लिखा हुआ होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अपने ऊपर अटेंशन रखें। ड्रामा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल फिर से आया है और वो है बहुत सी आत्माएं आज भी दुखी हैं, समझो कोई भी प्रकार की स्थिति परिस्थितियां कष्ट दुख है, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब भी होता रहता है। तो इसके लिए उन आत्माओं के लिए वो ड्रामा अच्छा कैसे हुआ? हम बोलते हैं ड्रामा सदा कल्याणकारी है, ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा कल्याणकारी है। अब वो भले बाबा के बन गए, लड़ाई झगड़ा मारपीट है, तो उनके लिए ड्रामा अच्छा थोड़ी हुआ, कैसे हुआ? अच्छा
ऐसा है कि ड्रामा सदा कल्याणकारी है जरूर, ये कोई उनके कर्मों का हिसाब है, इसके कारण वो कर्जा वो हिसाब किताब चुकतू करना ये भी कल्याण ही है। इसलिए इसमें हम थोड़े अल्पज्ञ बुद्धि नहीं बने। मान लो आज मेरे सामने कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब आता है, झगड़ा होता है किसी से, कुछ भी होता है, हम अपने आप को ज्ञान योग से ठीक रखते हैं, लेकिन कोई के संस्कार इतने कड़े हैं जो बार बार टकराता जाता है, फिर कहते हैं क्या करें, इतना बंधन, इतने दुख, इतना समाज के अंदर विरोध, फिर भी ये कल्याणकारी कैसे है? और बाबा कहता है बच्चे जो तुमने पास्ट में किया है अभी उसका रूप आ रहा है, हल्के हो जाओगे, कर्जा उतर जाएगा, इसमें कल्याण है। तो ड्रामा की हर सीन में वास्तव में कल्याण है, लेकिन बेहद की दृष्टि रख करके अगर हम सोचते हैं तो हमको दिखाई देता है। एक बार क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी ने श्री छोड़ा था ना, तो बहुत हंगामा हो गया और हमारा एक सेंटर जो था ना वो 4थी मंजिल पर था और नीचे सरदारों की दुकान थी टायर की, तो लोग भड़क गए और भड़क करके टायरों की दुकान में आग लगा दी। अब टायर जलेगा तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग जल गई, हमारा सेंटर भी जल गया। तो लोगों ने बहुत कहा कि बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे बच्चों का तो कुछ नुकसान नहीं हो सकता है, मैं उसका रक्षा करता हूं, फिर बाबा का घर क्यों जल गया? बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए वहां पर। फिर बाबा आए थे तो बाबा को बताया तो बाबा बड़ा मुस्कराया, बोला अच्छा हुआ, जब बाबा ने अच्छा हुआ कहा तो और सबके प्रश्न उठ गए, ये क्या बाबा का घर जल गया इतना बड़ा, फिर कहते अच्छा हो गया। तो बाबा ने कहा अच्छा हुआ, इसमें भी कल्याण है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी दादी बहुत बुजुर्ग हो रही थी, चार मंजिल पर लिफ्ट तो थी नहीं, चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती थी, मकान मिल नहीं रहे थे नीचे कहीं, ज्यों आग लगी त्यों सब जागृत हो गए सरकार वाले, फटाफट पहले से एंटर नीचे दे दिया, एक कल्याण हुआ। दूसरा इंश्योरेंस वाले आए, सारा पैसा जितना नुकसान हुआ वो मिल गया। तीसरा ब्राह्मणों के अंदर इतनी सहानुभूति हुई, दादी बाबा के घर में ये जल गया, मैं एक इतनी अच्छी फ्रिज ला देता हूँ, मैं ये ला देता हूँ, जितना सेंटर पर सामान था उसे डबल आ गया, सेंटर नीचे बन गया, सामान डबल हो गया, इंश्योरेंस पूरा मिल गया। अब बाबा कहता है कल्याण नहीं तो क्या कल्याण है इसमें, अच्छा हुआ जल गया, पुराना गया नया आ गया। लेकिन उस समय हमारे प्रश्नों की उछल बाबा देखता है, कितना ये सोचता है नेगेटिव, क्यों हो गया कैसे हो गया, उछल रहा है, लेकिन नहीं शांत रहो धीरज धरो सब ठीक हो जाएगा।
भक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कई बार भक्ति में जब हम अज्ञानी थे, भक्ति में हमने भगवान से मनोकामना की, कुछ मांगा और वो पूरा हो गया, तो हमने भगवान को कहा था कि ये बात करोगे ये बात हो जाएगी तो हम ये चढ़ाएंगे ये पूरा करेंगे, बहुत सी हमने भगवान से भी वायदे किए हुए और उसी बीच हम ज्ञान में आ गए, तो वो पूरा करें क्या करें, वो चढ़ावा चढ़ाएं ना चढ़ाएं। एक और प्रश्न आ रहा है, त्योहारों पे हम जब बिजनेस करते हैं तो त्योहारों पे बहुत से लोग चंदा मांगने आ जाते हैं, अब वो चंदा मांगने आते हैं तो उनको दिया जाए तो बाबा कहते हैं नहीं देना चाहिए, और नहीं देते तो वो नाराज होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, हम तो तंग आ गए इसी बात से, हमें क्या करना चाहिए।
पहली बात है, जो आपने मान्यताएं रखी थी और आपकी पूरी हुई और आपने वायदे किए थे तो बाबा कहता अभी तो डायरेक्ट मैं मिल गया हूँ, जो करना चाहो अभी कर लो, इनडायरेक्ट करने की क्या जरूरत है। बाबा अगर मिल गया और आपने कोई ऐसी बाबा के प्रति भावनाएं रखी थी, कराने वाला फल देने वाला तो बाबा ही है ना, भक्ति में भी तो अगर कोई फल मिलता है तो मूर्ति तो नहीं देती है, ये तो ज्ञान स्पष्ट हो गया कि नहीं, अभी तक स्पष्ट है। उस मूर्ति से भी अगर आपकी कोई भावनाएं पूरी हो रही तो भी बाबा कहता है मैं पूरी करता हूँ, मूर्ति नहीं करती। तो नहीं मानता है तो उसको कोई मना थोड़ी कर सकता है, भले करे जा करके, बंधन तो नहीं है, कोई रुकावट तो ऐसी नहीं डालो। अगर आपका पति आपसे बिल्कुल अलग करना चाहे तो भले करे जाके, ना तो बांधेंगे क्यों। नहीं करता तो आप कोई लड़ाई थोड़ी करेंगे, संबंध है, संबंधों में टकराव न हो बचाने का प्रयास किया जाता है, बचा सके तो बचाओ नहीं तो लड़ाई नहीं करो, बाकी अगर करता है तो कर दे। तो फिर बहुत लाइट रहो इस समय, अगर मान्यता हुई है और आपका पति ज्ञान समझता ही नहीं है, परिवार वाले विरोध करते हैं तो फिर क्या करेंगे, क्या झगड़ा करेंगे क्या। दूसरा क्या था, चंदा वाला,
चंदा।
क्या है, कई परिस्थितियों में देना पड़ता है, कहीं कहीं देना पड़ता है, नहीं तो बहुत विरोध होता है। आप युक्ति से अगर चल सकते हो तो बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो आप झगड़े पे नहीं जाओ। जैसे जी जी हम सब जानते हैं गलत जगह जाता है, लेकिन समाज को देखना तो पड़ता है कई जगह पर, कोई सामान दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज दे सकते, अगर आप समझा के उसको संतुष्ट कर सकते हो तो करो, बाकी समाज विरोध न करे इतना तो ध्यान रखो, तो समाज में जीना है, समाज में रह रहे हो, आपकी दुकान में अगर कोई ऐसे आकर हंगामा करने लगे तो हंगामा तो ठीक नहीं, अगर दो चार दस रुपए में कोई संतुष्ट हो जाता है तो संतुष्ट करके दे दो, लेकिन हम जानते तो है ना ये गलत जा रहा है, अगर कोई चीज से कर सकते हो तो करो। बाबा कहता है सब जगह युक्ति से चलना सीखो, युक्ति युक्त अगर बच सकते हो तो बचाओ, नहीं बच सकते हो आप समझते हो इतनी झगड़ा हो जाएगा, इतना समाज विरोध हो जाएगा, कई जगह पर देना पड़ता है, हर जगह पर नहीं करना पड़ता है कि नहीं बाबा ने तो मना किया है, बाबा जहां मना किया वहां तो नहीं धरो ना, अपने आप जा करके बैठा एक भिखारी मांग रहा है और आप जाकर के उसको देख करके दे आते हो और जाके शराब पीता, उसके लिए मना किया, बाकी अगर ऐसे कोई समाज के अंदर आज होली होती है, आज त्योहार होता है, कोई ऐसा फंक्शन करना चाहते हैं, सबसे मांगते जाके दुकानों के आगे 10 रुपया 50 रुपया रखते हैं और नहीं देते हैं तो फिर दुश्मनी लेते हैं, बदला लेते हैं, फिर डिस्टर्ब
कहते हैं देना ही लेना है, कई की भावना जुड़ती है, हम देते हैं। विभिन्न संस्थाओं वाले अनेक आयोजन करते हैं, जैसे अभी गणेश का प्रोग्राम चल रहा है तो हम उस आयोजन में देते हैं और उस भावना से देते हैं। हम शो के लिए ना दें कि मेरा निजी नाम हो, मेरा ऊपर नाम जाए, ऐड हो, वो चीज से नहीं, बल्कि हम इस भावना से दें कि जैसे गंगा जल डालते हैं शुद्धता के लिए, ये हम ब्राह्मणों का पैसा अगर उनकी संस्था में, उनके भक्ति में जा रहा है, किसी रचना उसे वो रचनात्मक ही मानते हैं, उनकी दृष्टि में वो रचनात्मक है, तो मैं बाबा के यज्ञ का वो कणा दाना किसी भी रूप का, चाहे धन चाहे वस्तु चाहे समय का सहयोग, इसी भावना से लगाऊं, इसी स्मृति से लगाऊं, यूज करूं कि ये उन्हें परिवर्तन करेगा। इससे एक वायुमंडल अच्छा बनता है अपने यज्ञ के लिए, अपने ब्रह्मावत के लिए, और उसका रेस्पॉन्ड कहीं जो शुभ भावना से हम करते हैं उसका हमें अवश्य मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें हमें ध्यान देना है अपना निज नामाचार, अपना शोक पूर्ति नाम।
अभी जैसे मैं आपको एक ही कल का मिसाल बताता हूँ। कल हम लोग यहाँ पर एक मंदिर बना है बहुत अच्छा, हनुमान जी का, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का मंदिर है, और जब इसका उद्घाटन हुआ था तो दादी जानकी को बुलाया था उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से, और दादी का बड़ा सम्मान किया था। तो दादी गुलजार कल ऐसे बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो दादी को ये मंदिर दिखा के लाते। तो हम मंदिर में गए, वहां जो माता है जो मंदिर के निमित्त, वो 107 साल की है। अब इतनी भावना, दादी को देख के वो इतनी गदगद हो गई, पैर पकड़ लिए, दादी को ऐसे पकड़ लिया, दादी आप आ गई, हमारी भक्ति पूरी हो गई, ऐसे ऐसे मतलब। ब्रह्मा कुमारी को इतना आई नहीं है कभी पांडव भवन में, लेकिन यही है आबू में ही। फिर हम लोग जब मंदिर के अंदर गए तो नेचुरल है अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो उनको खराब लगेगा, तो दादी के हाथ से 500 रुपया उस पुजारी को दिलवा दिए। तो ऐसा थोड़ी हमने 500 रुपया दिया अभी वो क्या करेगा। अभी मान लो अगर ऐसे स्थान पर आप जाते हो पर कुछ तो चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उन लोगों के अंदर से बदुआएं निकलती, कहती ये सफेद ड्रेस वाले आते हैं ना, ये पता नहीं नाश्ते का सब कुछ नहीं करते हैं, और हम समझते हैं बाबा का पैसा है मैं क्यों दूं। नहीं, ऐसे स्थान पर जब जाते हो तो है अपने पास तो जरूर कुछ न कुछ उनको देना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो जाए, असंतुष्ट नहीं करें। बाकी हम कोई श्रद्धा है वो भावना है इसलिए चाह रहे हैं हमको कोई आशीर्वाद दे देगा, वो कोई कामना पूरी कर, ये तो भावना तो नहीं है, लेकिन एक सहयोग की भावना, चलो इतना मंदिर बनाया है 500 रुपया घर गया अभी तो और मंदिर में लगेगा, अच्छा है लोग आते हैं श्रद्धा से बैठते हैं आकर के।
लेकिन भाई जी आजकल जो गणेश का ये करते हैं ना, उसमें ये देखा गया कई लोग शराब पीते हैं पैसा लेकर के, जो नशा करते हैं।
देखो तो ऐसा है भाई, जहाँ पर आप बचा सकते हो वहाँ बचाओ, मना नहीं किया जा रहा है, बचा सकते हो, नहीं देना है और कोई संबंध बिगड़ नहीं रहे तो कौन मना करता है।
इसमें स्वयं को ही देखना है जितना जो कर सकते हैं, जैसा अपन उचित,
आप जैसा उचित समझते हो, सेफ्टी फर्स्ट, ज्यादा विरोध नहीं हो ब्रह्मा कुमारी इसका, नाम बाबा का बदनाम हो रहा है कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ऐसा ना हो। आप युक्ति से अगर मुक्ति पा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पा सकते हो तो देर करके भी छुटकारा पा लो, बदनामी नहीं हो, बस ये ध्यान रखो।
और
देखो ऐसा है कि नहीं दोगे तो भी वो लोग गलत करेंगे ना, आपके बच्चों को फिर ठीक पढ़ाएंगे नहीं, फिर वो बहुत तंग करेंगे बच्चों को। अब बच्चे हैं, टीचर्स डे है तो देना ही चाहिए ना, क्यों नहीं दें जी, देना ही चाहिए ना, इसमें क्या है। ये बहुत छोटी छोटी बातें है तो आप लोग सब समझते हो, जहां पर व्यर्थ दान जा रहा है उसको मना किया जाता है, जहां आप समाज के अंदर जुटे हुए हो वहां आपको करना पड़ेगा सब।
बच्चे तो टीचर्स को हमेशा मैंने ज्यादातर अनुभव किया अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह देते हैं, अच्छी चीज देते हैं, अच्छी चीज आप कोई भी देते हैं तो ठीक है। अब वो तो हमें थोड़ा सा सेंस से इस्तेमाल करके चलना होगा। एक बहुत अच्छी बात, राजू भाई को तो वरदान मिल गया है, हमारे ग्रुप की तरफ से कि राजू भाई आप तो रेडीमेड स्टेज पर हो ही हो, हम क्या करें, हमें तो दुनिया में रहना पड़ता है। आजकल तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है, हम विजयंती कैसे बने, विनाश काले विजयंती हम बने, वो कैसे बने?
विनाश काले निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार से विजय है, ऐसे नहीं विजय है। अगर बाबा में फुल फेथ है तो आप अपने को कम नहीं समझो, आप भी बहुत बड़ी ऊंची स्टेज पर हो। बाबा ने आप सबको आदर्श प्रवृत्ति में रख करके चैलेंज दी है सन्यासियों को कि ऐसे घर ग्रस्त में रह के इतने ऊंचे विचारों में रह सकते हैं, पवित्र और योगी जीवन जी सकते हैं, तो बड़े ऊंचे समान में रहो, ऐसे नहीं हम पहुंच गए आकर के आप पीछे हैं, आप बहुत ऊंची स्टेज पर हैं। अपने समान में स्थित होंगे ना तो कोई छोटी छोटी बातों का सहज सामना कर सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयन्ति, जिनकी प्रीत है बाबा के साथ उनका विनाश थोड़ी हुआ है। तो आप तो प्रीत बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि हैं, और बाबा से जितनी जिसकी दिल की प्रीत है उसकी विजय निश्चित ही है, हार हो ही नहीं सकती। तो आप बहुत ऊंचे समान में रहो, कल्प कल्प का मैं विजयी रतन हूँ, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रोज नशा चढ़ाओ, बाबा कहता खुद अपनी घोट तो नशा चढ़े, हम चढ़ाएंगे तो नहीं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, रोज पियो घोट करके कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे किसने चुना है। देखो कैसी छोटी छोटी बातें आएंगी, परवाह नहीं करेंगे।
हमारी फौज का जो नाम है
जोड़ते सोड़,
हमारी फौज का, इस रूहानी फौज का नाम है शिव शक्ति पांडव सेना। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो बॉर्डर की फोर्स होती है उस पर गवर्नमेंट का बहुत ध्यान होता है। तो भाई साहब तो रेडीमेड स्टेज पर हैं, लेकिन आप भी हमारी शिव शक्ति पांडव सेना के जो नहीं सिपाही नहीं, जो हमारा जनरल है शिव बाबा और उसके जो मेजर जनरल है अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, उनकी दृष्टि आप घर गृहस्थ में रहने वाले विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रहकर बाबा की आज्ञाओं को निश्चय बुद्धि होकर अंगद के समान दृढ़ होकर जो पालन कर रहे हैं, उन पर एक्स्ट्रा फोर्स होता है, एक्स्ट्रा फोकस होता है। उस फोकस को आपको फील करना है कि गवर्नमेंट आपको जो स्पेशल बोनस दे रही है, गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम स्पेशल करेंट दे रही है, उसको आप कैच करेंगे तो आपकी जो ये शिकायत है ये दूर हो जाएगी और आप घर गृहस्थ में रहते हुए शोपीस संसार के बने हुए हैं उनमें और चमक आ जाएगी।
एक प्रश्न पहले भी आया है, वो फिर वापस आया है, और वो है देही अभिमानी और आत्माभिमानी में अंतर क्या है।
वही माता जी का प्रश्न अभी आई है माता जी, क्या आप उस समय नहीं थी जब उत्तर दिया मैंने?
और तपस्या के विभिन्न स्तर कौन कौन से, डिफरेंट लेवल्स ऑफ तपस्या, तपस्या के स्तर कौन से?
आत्म अभिमानी अर्थात आत्मिक चिंतन, अगर आप पढ़ेंगे एक जगदीश भाई जी की पुस्तक है इंग्लिश में, ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन सोल कॉन्शियस, सारी विश्व की समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है वो है सोल कॉन्शियस। तो प्यारे बाबा ने हमें अपना बनाया तो सबसे पहले हमें हमारा ही परिचय दिया, मैं कौन हूँ, और इस पाठ को जितना जितना मेरे मन में और मेरी स्थूल कर्मेंद्रियों में अभ्यास में होता है उतना उतना मैं, जैसे बताया, आत्मिक स्मृति और आत्मिक स्थिति दोनों अलग अलग बात है। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है, तो हम आत्मा का स्मृति रखते हुए मन के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा जब स्मृति में रहते हैं तो जब हम प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति बैठते ही हमारी बन जाती है, और उस आत्म अभिमानी स्थिति से हम सहज ही बाबा की शक्तियों को, गुणों को, रिलेशंस को अनुभव में ला सकते हैं। और यदि हम आत्मा का ज्ञान तो है लेकिन आत्म भान नहीं है, इसे कहेंगे देह का भान, आत्म भान का अभाव अर्थात देह भान, देह का ही भाव मेरे मन के अंदर है। मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, रोगी हूँ, ये भाव मेरे मन से आत्मिक स्मृति से खत्म हो जाए, इसको कहेंगे देह भान की खत्म होना और आत्म भान का, आत्म स्थिति का स्थित होना, जो तपस्या का पहला आधार है। जैसे हमें ट्रैवलिंग करनी होती है तो प्लेटफार्म पर, एरोड्रम पर जाना है, तो आत्म भान स्टेज हमारी तपस्या का मूल आधार है। उसके बाद जब हम अपनी आत्मिक यात्रा, रूहानी ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, तभी हम उससे गंतव्य को पाते हैं, अर्थात प्रभु मिलन हमारा गंतव्य है। ये हमारी तपस्या का दूसरा स्वरूप है, जिसका नेट रिजल्ट क्या होगा, तपस्या का तीसरा स्वरूप होगा परिवर्तन। तो ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें 63 जन्म लगे देह भान में आने में, ऐसे ही इस संगम के युग में हमें आत्मिक स्मृति के अभ्यास को प्रति पल, प्रति सेकंड कायम करना है, तभी हम अपने तपस्या के फाउंडेशन को मजबूत करेंगे और तभी हम लंबे समय सुकर्मों के बल को इकट्ठा करेंगे, जो हमारी तपस्या को शार्प बनाने में, कॉन्क्रीट बनाने में मददगार होगी।
जो योग के जो विभिन्न, बहन जी अभी बता तो रही थी, लेकिन बाबा ने हम सबको योग के 4 प्रयोग बताए हैं। पहले हम बाबा की जब याद में बैठते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, कुछ मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, जो कमेंट्री देते हैं ना, जैसे तो जैसे एक मनन चिंतन है ये। और मनन चिंतन के बाद धीरे धीरे बहुत अपने भाग्य की स्मृति, भगवान की स्मृति, और उसमें रूह रियान होती है, बाबा आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपने मुझे कैसे निकाला किचड़े से, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र बना दिया, ऐसे ऐसे बाबा से वार्तालाप होती है, दूसरी स्टेज आ जाती है योग की। और फिर तीसरी स्टेज में जैसे सब जवाबदारियां अर्पित करके मैं तो एकदम लाइट हूँ, एकदम फरिश्ता हूँ, कोई भान नहीं है, कोई संबंध नहीं है, देह देश के संबंधों से बिल्कुल उपराम, लाइट स्टेज, फरिश्ता स्टेज बन जाती है। और फिर उसके बाद जब फरिश्ते स्टेज से और डिटैच होते हैं तो न्यारी स्टेज, बिल्कुल बीज रूप स्टेज, आत्मा और परमात्मा का जैसे डायरेक्ट मिलन, वो संबंध का अनुभव होने लगता है। वो वास्तव में ज्वालामुखी याद का जो प्रश्न था, वो स्टेज जब बनते बनते एकाग्रता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, स्वच्छता उसमें होती है, तो स्पष्टता आ जाती है, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, और बाबा जो है, जो जैसा है, वो स्पष्ट जैसे मिलन और एक दूसरे को हम देख सकें, वो अनुभव जब होने लगते हैं तो वो पावरफुल स्टेज बन जाती है। तो ये 4 स्टेजेज योग की नंबर वाक बनती हैं। लेकिन जो बहन पूछ रही है, आत्मभिमानी और देहिमानी, वास्तव में केवल शब्दों का अंतर है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। आत्मिक स्थिति में हम कहते हैं आत्मा के निजी गुणों का अनुभव करो, आत्मा के जो 7 गुण है ना, उनका अनुभव करो। और देही अभिमानी स्थिति में जो देह से संबंधित बातें आती हैं, देह अभिमान जिसके कारण पक्का हो गया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, जो मैं आ गया, उस मैंपन से उपराम होना, वो देही अभिमानी स्थिति है।
4 से संबंधित एक प्रश्न आया है, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं चार्ट लिखो, चार्ट किसे कहते हैं, क्या चार्ट की सब बातें सबके लिए एक सरीखी होती हैं, एक सी होती हैं, या महारथियों का चार्ट अलग होता और दूसरों के लिए चार्ट अलग होता। एक और प्रश्न इसी के साथ जोड़ देती हूँ, अमृत वेला हम योग करते हैं लेकिन सारा दिन की दिनचर्या हमारी टाइट होती, थके हुए आते, तो अमृत वेला योग करने के बाद दिल होती है 1 घंटा सो जाए, क्या सो सकते हैं?
1 घंटा नहीं सो, अगर कोई ज्यादा थकावट है और आपकी दिनचर्या के अंदर लगता है कि थोड़ी रेस्ट चाहिए, तो फिक्स टाइम करो, 10 मिनट 15 मिनट में फ्रेश हो जाओगे आप। अगर जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप समझते हो कि हमको थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे, अगर आप टाइम फिक्स करेंगे ना, तो आपका बाद की दिनचर्या सेट रहेगी, नहीं तो मुरली मिस हो जाएगी। अमृत वेले के बाद 1 घंटा कोई सो गया तो तैयार होते होते उसके मुरली पूरी हो जाएगी, इसलिए 10-15 मिनट अगर आपको बहुत जरूरी है तो रेस्ट कर लो, लेकिन वास्तव में योग के बाद गहरी नींद में अगर सो जाएंगे तो आपकी आगे की दिनचर्या बिगड़ जाएगी।
और चार्ट के बारे में?
नहीं, उसके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आता। वो तो कई लोग कह देते हैं ना, जो योग किया वो पूरा हो गया। अब योग तो आपने कमाई कर ली, अच्छी रूह रियान कर ली, बाबा से शक्ति भर ली, वो कोई खत्म नहीं हो गई। कभी कभी बहुत जरूरी, शरीर के हिसाब से आज बुजुर्ग हो गए, बड़ी आयु हो गई, उसको रेस्ट चाहिए, पूरा नहीं रेस्ट कर पाए हो, अमृत वेले के बाद अगर लेट गए तो ऐसा थोड़ी आपका योग ही खत्म हो गया सारा। ऐसे जनरल में बोल देते हैं लेकिन ऐसे नहीं है। हमारी दादी जी सिचुएशन शरीर के हिसाब से, दादी जी थी ना, दादी जी हमेशा योग के बाद 15 मिनट जा करके आराम से विश्राम कर लेते। ऐसा नहीं वो कोई सो गई तो मुरली क्लास मिस कर दिया या वो तैयार नहीं हुई समय पर, ऐसी नींद नहीं थी। लेकिन 10-15 मिनट लेट करके रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होना अलग चीज है, लेकिन गहरी नींद अगर कर लिया 1-2 घंटा सो गए जा करके तो मुरली मिस हो जाएगी ना आपकी, दूसरा नुकसान हो जाएगा।
आलस भरना अलग बात,
आलस
है, रिलैक्सेशन अलग चीज। चार्ट की बात थी।
चार्ट जो है बाबा ने एक जैसा चार्ट सबके लिए दिया है, वास्तव में बाबा की बनी हुई दिनचर्या के प्रमाण श्रीमत के अनुकूल अगर हम चल रहे हैं तो वही यथार्थ चार्ट है। श्रीमत में मनमत मिक्स न हो, परमत मिक्स न हो, पूरा ध्यान रहे, बाबा ने मुझे ये श्रीमत दी है। श्रीमत की अवज्ञाएं न हो उसके लिए बाबा बार बार ध्यान खिंचवाता है, बच्चे अपना चार्ट लिखो कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये दिनचर्या और चार्ट को, श्रीमत को समझ करके अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारी प्रोग्रेस होती है, पता चलता है कि कल मेरी स्टेज क्या थी, आज मेरी स्टेज क्या है। और अगर नहीं लिख सकते हैं तो एक आदत डालो कि मुझे अपनी एकाग्रता के आधार से चेक जरूर करना रात भर में, रात के अंदर, शाम को, कि सारे दिन में मेरे से ऐसी कोई अवज्ञा तो नहीं हुई जिसका मेरे पर बोझ चढ़ जाए। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बच्चे बड़े गुप्त विकर्म होते हैं, पता नहीं चलता है, क्योंकि देहाभिमान में जो कर्म हम कर रहे हैं, देहाभिमान के वशीभूत होकर के, किसी भी विकार के अधीन होकर के अगर कोई कर्म कर रहे हैं, आज हम क्लास भी करा रहे हैं लेकिन इसके बीच में मेरा स्वार्थ है कि मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरी नाम हो जाए, तो वो भी सूक्ष्म विकर्म के खाते में जा रहा है। अब इसको कौन समझ सकता है? अब इस विकर्म पर हमारा ध्यान हो कि भले हमने जो कहा, बाबा ने जो कराया, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, मेरा इसमें क्या चाहिए। तो अगर निस्वार्थ भावना है तो विकर्म मेरा नहीं बनेगा, अगर उसके बीच में भी मेरा स्वार्थ आ गया तो विकर्म के खाते में चला जाएगा। इसलिए कई बार हम लोगों को ये पता नहीं चलता है, ये जो कर्म है ये भी कोई विकर्म में चला जाएगा, ये बहुत ध्यान देने की बात है।
कई बार भाई साहब चलते चलते अलबेलापन भी आ जाता है, वो अलबेलापन भी नहीं हमारी जीवन में आए। आज बाबा ने कहा मियां मिट्ठू बन जाते हैं, अलबेलापन हमारे जीवन में आ जाता है। तो उन दोनों बातों के लिए भी हमें चार्ट नोट करना आवश्यक है। कागज पेन से नोट करें तो बहुत अच्छा है, जिससे वो डायरिया हमारी आने वालों की पुरुषार्थ को मेंटेन करने के काम आती है, सेवार्थ आती है। अगर लिख नहीं पाते तो कई बार मुन्नी दीदी कहती हैं सोने से पहले योग करते समय बाबा को सारा मन बुद्धि से चेक करा दो कि आज दिन में कोई मेरे से ऐसी भूल, ऐसी अवज्ञा, अलबेलापन, मैंपन, अति गुण की अति भी, जैसे भाई साहब भी बता रहे, निमित्त भाव का अभाव भी हमें अहंकार से कोई विकर्म करा ना दे। इसलिए हमें चार्ट चेक करना रोज सोने से पहले जरूरी है। सोना माना दिन का एंड और जगना माना सुबह की बिगनिंग। तो चेक करते समय बाबा को हम हैंडओवर करें, बाबा से हम बल भरें, तो हमारा अमृत वेला भी पावरफुल होगा और दिन की एनालिसिस भी मेरी प्रॉपर होगी।
दो तीन बारे अब ये प्रश्न जो भी आ रहे हैं मैं समझती हूँ रिपीट होके आ रहे हैं। मैं बोल तो देती हूँ लेकिन अब मैं समझती हूँ कोई भी प्रश्न ना आए क्योंकि रिपीटेशन आने लगी है। और एक प्रश्न अभी मेरे पास आया है, सारा दिन की दिनचर्या कैसी रखें? बाबा ने अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या दी हुई, वो कैसे रखें? स्वमान में कैसे रहें? ये प्रश्नों के जवाब मैं समझती हूँ काफी कुछ आ चुके हैं। और सहन शक्ति मेरे में नहीं, और आने वाले विघ्न भी इसी पथ पे आ रहे हैं, तो सभी विघ्न ऐसी कमजोरियों पे ही आते हैं क्या? जो अपने में कमजोरियों उसी पर विघ्न आते हैं क्या?
बताओ।
सहन शक्ति जब हम अन्य आत्माओं को कोर्स कराते हैं या हमने स्वयं किया है, तो योग मेरा बाबा से लगा हुआ है, इसका पहला उदाहरण क्या होता है? अष्ट शक्तियों में जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं कि योग जब आत्मा का परमात्मा से जुट जाता है, हम सब तो योगी जीवन वाले यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब हम योग के ऊपर समझाते हैं योग लगाना क्यों आवश्यक है, तो पहली प्राप्ति क्या बताते हैं? सहन शक्ति। हमारे अंदर अष्ट शक्तियों में सबसे पहली शक्ति सहन शक्ति आने लगती है। गॉड गिफ्ट के रूप में आती है, प्रतिफल के रूप में आती है। हम जैसे जैसे योग करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर गुण और आंतरिक शक्तियां आती जाती हैं और हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो यदि मेरे अंदर आज योगी ब्राह्मण बनने के बाद भी सहन शक्ति का अभाव मुझे लग रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि मुझे और अपने आत्म चिंतन को बढ़ाना है और परमात्मा की निकटता को समय निकालना है। मैं और योग के लिए समय दूं ताकि मेरे पास आंतरिक शक्तियों का विकास हो, परमात्मा शक्ति मेरे अंदर समाहित हो और मैं सिचुएशन को हैंडल टैकल अपने सद्व्यवहार, मधुर बोल और सत्कर्मों से कर सकूं। उस चित्र में जो हम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि योगी में सहन शक्ति आ रही है और कोई उसको पत्थर मारता है तो रिटर्न में क्या देता है वो? तो कौन से फल? प्राप्ति के फल, अनुभूति के फल, सत व्यवहार के फल। जब विघ्न डालने वाले को हम देते हैं तो वो विघ्न डालना खत्म कर देता है। इस प्रकार से हमें जो बाबा ने डायग्राम मैप सहित विश्लेषण दिया है उसमें मुझे अपने ध्यान को, अटेंशन को केंद्रित करना है और उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ज्यों ज्यों मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, मेरी शक्तियों का विकास होगा, त्यों त्यों मेरे विघ्न खत्म होते जाएंगे।
आपके अनुभव में कोई रोगी निरोगी बना है? और रोगी निरोगी ज्ञान योग के आधार पर कैसे, अगर कोई ऐसा बनाओ तो बताएं।
ऐसा है कि यदि विधि पूर्वक योग अभ्यास किया जाता है, उसके प्रयोग किए जाते हैं, तो कई प्रॉब्लम शारीरिक ठीक होती हैं। जैसे अभी हमारे पास करीब 1000 पेशेंट हार्ट के कैड प्रोग्राम में आकर के स्वस्थ हो गए हैं। उनकी आर्टरीज जो ब्लॉकेज थी बिना ऑपरेशन के खुली हैं, प्रूफ है हमारे पास और उसकी साइंटिफिक रिजल्ट है। खुला है आपका? खुला है योग किया आपने, प्रयोग किए योग के, तो ऐसा निरोगी तो आपके सामने बैठा है।
ताली बजाए,
ताली बजाओ वैसे। लेकिन इसमें भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार बाहर के भाई बहने जब नए नए आते हैं और उनको जिस प्रकार से कहा जाता है वो फुल फॉलो करते हैं, जरा भी अपनी मत मिक्स नहीं करते, खान पान की पूरी परहेज रखते हैं, एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान देते हैं और जिस तरह से उनको मेडिटेशन बताया जाता है कि बाबा की किरणों को ऐसे लेना है, पहले सूक्ष्म शरीर पर डालना है, फिर स्थूल शरीर पर उनकी किरणें जाएंगी, 6 मास तक नियमित रूप से अगर इस दिनचर्या का फॉलो करते तो मैं समझता हूँ इनकी आर्टरी खुली होंगी। ऐसा हुआ है ना? 6 मास तक फॉलो करने किया ना पूरा, तो गारंटी ये, ऐसे नहीं 4 दिन में 5 दिन में हो गया, लेकिन 6 मास तक इन्होंने पूरा फॉलो किया है। ऐसे 1000 पेशेंट बिल्कुल ठीक हुए हैं। लेकिन कई भी के ये थोड़ी हो ही सकता है, ये कैसे होगा, ये कोई जादू मंत्र है क्या, 6 मंत्र है क्या, ऐसे ऐसे संकल्प अगर चला रहे हैं तो उन पर कोई प्रयोग नहीं होता जी, नहीं खुलते हैं, ऐसे बोलते हैं। कोई साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं था और अभी सभी साइंटिस्ट यहाँ आकर के मान रहे हैं, जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सब मान रहे हैं कि ये कैसे खुला, ये योग से खुला है ना, हमने कोई ऑपरेशन थोड़ी करा है, इसका ऑपरेशन थोड़ी हुआ है। कोई भी पेशेंट से आप पूछ लेंगे तो बता देगा अनुभव, प्रैक्टिकल को प्रमाण की जरूरत नहीं है।
कार्डियोलॉजिस्ट भी आकर के स्केट के प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट खुद भी आकर के अपनी आर्टरीज को ओपन इस पद्धति से करा रहे हैं।
बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं क्योंकि ये सारी बीमारियां टेंशन की जड़ हैं। जितना टेंशन बढ़ रहा है ना, प्रदूषण, टेंशन और उसके कारण क्रोध, और क्रोध के कारण जब बहुत गुस्सा आता है ना तो ब्लड गर्म होता है और वो जहां चाहिए वहां क्लाट कर देता है। अब जब शीतल आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में रहती है, बाबा की शक्तियां लेती है, तो धीरे धीरे वो क्लाट खुल जाते हैं, क्लोस्टर पिघल जाता है। तो प्रयोग करने से होता है, और ऐसी कोई आत्माएं एकदम निश्चय बुद्धियों के बाबा के साथ कनेक्ट होकर के शक्तियां लें और उनको डालें, सातों गुणों को प्रयोग करें, तो कोई भी प्रकार की बीमारी ठीक हुई है और हो सकती है। ठीक हो गया, हमारे पास है ऐसे बहुत सारे भाई। एक हमारे पास किसान है, अभी हमारे पास आता है, योगी खेती मदद करता है, उसकी सब प्लाट कहता है मैं इतना भी नहीं चल सकता था, कोई काम नहीं कर रहा, अभी पूरी खेती कर रहा है, और कहता है अभी कितना भी मेरे से काम करा लो, मेरे कोई तकलीफ नहीं हार्ट की। हर टाइड प्रोग्राम में वो सेवा में आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण।
अब लास्ट के प्रश्नों की ओर जा रहे हैं हम,
फिर हम आधा घंटा अनुभव भी सुनेंगे ना, फिर आज लास्ट है ना।
हाँ, शाम को योग, दो प्रश्न मेरे हाथ में है तो उनको पूरा करते हैं। एक प्रैक्टिकल घर गृहस्थी का प्रश्न है कि बेटा है, पढ़ता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन हम लोग ज्ञान में हैं, बाहर का खा नहीं सकते, तो फिर वो बाहर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं जा पाता, 3-4 दिन के प्रोग्राम्स होते हैं बाहर, क्या किया जाए?
अगर बेटा निश्चय बुद्धि और पक्का है, अगर बेटा समझता है कि मैं बाहर का नहीं खाऊं, तो ऐसी चीजें माताएं उनको बना के दे सकती हैं जो खा करके रह सकता है। अगर वो खुद पक्का है तो, अगर उसको लगता है नहीं मेरे को खाना ही पड़ेगा, तो उस पर बंधन नहीं डालो। अगर नहीं खाता है तो आप ऐसी की कोई चीजें उसको बना के दो जो 2-4 दिन 5 दिन के लिए उसके साथ रह सकें। मजाक से उसे थोड़ी डलना है, उसको लोक लाज तो सब छोड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, मजाक की कुछ ऐसी चीजें ले जाए जो उनसे अच्छी हो, खाए बैठ करके, फल खाए, दूध पिए, कंपटीशन से रोकना नहीं उसको,
फ्रूट्स ले सकते हैं।
नहीं, उसको आप अपने पास से कोई ऐसे चीजें बना के दो ना।
आजकल तो
हम लोग आज एक एक हफ्ते का यहाँ से कोई भेजते हैं, जाते हैं बाहर, माताएं बना के देती हैं, इतनी अच्छी कोकी बना के देती हैं, नमकीन मीठी, ऐसी चीजें बना के दो जो उनको उनको भी खिलाए तो भी खुश हो जाए। अरे मजाक से,
इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ता है। हाँ, स्ट्रांग बनना पड़ता है इसमें। अच्छा, एक प्रश्न और आया है, रिद्धि सिद्धि से जुड़ा हुआ है। रिद्धि सिद्धि किसे कहते हैं? पॉजिटिव सिद्धि या नेगेटिव सिद्धि, दो विधि से ये यूज कर सकते हैं। तो हम बाबा के आए, क्या ऐसा भी होता है क्या? कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, ब्राह्मण बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ये सत्य है क्या? हमारे घर में प्रॉब्लम आई, कोई ब्राह्मण लोग एक ही तारीख पर, एक ही समय पर, एक ही मैसेज 5 महीने से भेजते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, हमें कंफ्यूजन होता है, ये रिद्धि सिद्धि क्या चीज है?
ये क्या बोला?
तंत्र मंत्र का प्रभाव आता है क्या, या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस्तेमाल?
ऐसा है कि जिसके पास योग की सिद्धियां हैं उसके ऊपर कोई भी रिद्धि सिद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां पर आत्माएं कमजोर हैं, इच्छाएं हैं, वहां पर सब प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, इस चक्रों में अगर गए तो और फंसते जाएंगे। ये बहुत बड़ा चक्र है माया का, लास्ट वार है रिद्धि सिद्धि के रूप में। तंत्र मंत्र जंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब बाबा के पक्के योगी बन करके अगर रहेंगे, बाबा में संपूर्ण विश्वास है, योग ठीक है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आप कोई भी इन चक्करों में न जाएं तो बहुत अच्छा है, बच के रहें तो बहुत अच्छा, नहीं तो होता कुछ नहीं है। और कोई के पास चले गए तो और 10 चीजें उसमें प्रवेश करा देता है, वो भी कुछ साधन कर देता है। इसलिए बहुत संभल के चलना है कलयुग में। अगर कोई को ऐसी बातें हैं तो आप सभी मिल करके योगी आत्माएं बड़े स्नेह से श्रद्धा से योग करो, बाबा की शक्तियां उसके विघ्न को खत्म करेंगे। किसी पर कर देते हैं लोग। हमारे पास यहाँ यज्ञ में एक बार एक माता आई, डॉक्टर, उसका पति डॉक्टर था, बहुत भावना वाले बाबा के बच्चे थे। उस माता के ऊपर कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर रहा था जो एक स्थान पर वो उनके फोटो के ऊपर अगरबत्ती लगाता था तो उसका यहाँ शरीर जलने लगता था। अगरबत्ती फोटो पर लगा रहा है, वहां शरीर यहाँ जल रहा है। वो यहाँ आई दादी के पास, दादी मैं क्या करूं, अब मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। दादी कहती है सबसे बड़ा तांत्रिक मेरा बाबा है, तुम ऐसा करो सभी पूरे परिवार सहित आज के दिन ओम शांति भवन में जो बाबा का कमरा है पूरी नाइट योग करो, मैं भी करूंगी तुम भी करो। और उसने सचमुच प्रयोग किया, उसका सब दर्द चला गया, उसके बाद कोई प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसे होते हैं आजकल के बहुत सारे कारण बनते हैं। बहुत ऐसा कोई डिफिकल्ट बन जाए तो कोई का सहारा लेना पड़ता है तो मना नहीं करता, फिर जैसी बीमारी वैसा डॉक्टर होता है। लेकिन अगर बहुत आपको लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बाबा की याद से ठीक हो जाऊंगी, अगर विश्वास है तो बाबा मदद जरूर करता है, ठीक हो जाते हैं। इसलिए अधिक इन चक्करों में जाना नहीं।
शायद ये बातें बहुत स्पष्ट कर दी हैं, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि दोहराए जा रहे हैं प्रश्न, उनमें ना जाएं। खुशी किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, ब्लेसिंग्स क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, ये सब ज्ञान के राज आप सबको स्पष्ट है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, खुशी किसे कहते हैं, ये आप सब समझते हैं मेरे ख्याल से। और एक प्रश्न जो मेरे पास लास्ट मेरे हाथ में है, एक मिनट धैर्यता। एक प्रश्न आया है कि अगर हम ऑफिस में हैं और अगर हमें नहाने का संकल्प आता है, वॉशरूम यूज करते हैं, नहा नहीं सकते, क्या करना चाहिए? तो ये सब धारणाओं से जुड़ी हुई बातें हैं।
मतलब ये बात तो आप लोगों को खुद सोचनी पड़ेगी, कुछ युक्ति रखनी पड़ती है, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। वैसे लेट्रिन वाले कपड़े भी हम लोग टच नहीं करते हैं, मालूम है हमारे नियम के अनुसार कोई भी अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपका पेट ऐसा हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप टॉवल से भी साफ करके फिर वही कपड़े भले पहनो, लेकिन वैसे शरीर को हम लोग ऐसे बिना स्नान के, कुछ खाने की भी दिल नहीं करती, पीने का भी दिल नहीं करता, पता नहीं आप लोग कैसे चल सकते होंगे। होती प्रॉब्लम तो हम लोगों के आगे भी आती ना, कोई ऐसा हो गया तो ऐसी कोई बीमारी के कारण ऐसा कोई कारण बन जाता है और कभी अचानक जाना पड़ता है, पानी का इतना प्रबंध नहीं, बाथरूम ऐसा नहीं है, नहीं नहा सकते हो, तो भी थोड़ा स्वच्छता का नियम का ध्यान रख करके करो और जब समय मिले तो स्नान कर लो। लेकिन नियम पक्का रखो, नियम में कच्चे नहीं हो जाओ।
भाई लोग तो ऑफिस से जब घर आते हैं तो मैंने देखा है बहुतों का नियम होता है घर आके स्नान करने का, तो आप लोगों को तो ऐसे वातावरण से आते तो वैसे ही स्नान करना चाहिए, अपनी शुद्धि अपने हाथ में है। एक और बात की लास्ट प्रश्न ले रही हूं मैं, अब फाइनेंस का धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने सुना दिया है केवल प्रश्न। और दूसरा जो मैं प्रश्न लेना चाहती थी कि चौथा योग की अगर लास्ट स्टेज हमने अनुभव कर ली, बीज रूप अवस्था, उसके बाद तो किसी से मन ही नहीं होता है बात करने का बाबा के अलावा, तो फिर क्या करना चाहिए?
बैलेंस नहीं जो छोड़ना है, ऐसे उदासी जैसा थोड़ी बन जाए, बाबा से बात किया तो परिवार छूट जाएगा क्या? बाबा तो परिवार से छोड़ने की बात नहीं करता है, तो बाबा से बातें किया तो और परिवार प्यार करने लगता है। बीज को अगर जिसने पकड़ लिया सारा वृक्ष अपना हो जाता है, प्यारे इतने बन जाते हैं जो सबके साथ मिलनसार हो जाते हैं लेकिन फंसते नहीं है, न्यारे और प्यारे का बैलेंस।
फाइनेंस बिजनेस करना या नहीं करना,
कहीं पर भी फंसना नहीं, बस
सार बहुत सुंदर दिया, फंसना नहीं है।
फाइनेंस का बिजनेस भले करो, कौन मना करता, लेकिन भ्रष्टाचार वाला नहीं होना चाहिए, इधर से उधर वाला नहीं हो जाए, फंसो नहीं बस। क्या चीज, क्या बोला?
किसी से बार बार टकराव होता है तो हिसाब किताब जुड़ रहा है या कट रहा है?
अगर आप हल्के हो रहे हो उस टकराव से तो कट रहा है, अगर भारी हो रहे हो तो बन रहा है।
यस, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े होइए।
क्या स्वमान?
स्वमान स्थिति और योग तीनों में क्या संबंध है आपस में?
वो अर्थ है, अर्थ में ही अलग अलग बता रहे हैं आप। स्वमान माना स्वयं, स्वयं को मान देना, खुद अच्छी अच्छी बातें करके नशा चढ़ाना, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको कहते हैं। स्थिति है एकदम बिल्कुल मैं जो हूँ जैसा हूँ उसमें स्थित हो जाना, वो स्थिति है। और योग माना बाबा से मिलन है। तो तीनों चीजें अलग अलग बता रहे हैं आप। योग में बाबा से मिलन हो रहा है, स्थिति अच्छी बन रही है, और वो समान नशा चढ़ रहा है, तीनों हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।
अब अपने लिए सब जोर से ताली बजाओ, क्योंकि समाधान मिल गया है, समस्याओं का समाधान मिल गया। तो अब मैं समझती हूँ कहीं पर भी हम आपको, हम आपकी तरफ से राजू भाई, कविता बहन को ये वायदा या दिलाते हैं विश्वास कि हमारी तरफ से कोई भी भाई बहन पीछे रुकेगा नहीं, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा। चार दिन आप लोगों ने बहुत सुंदर बच्ची की आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप में से कोई एक बहुत सुंदर अनुभव जिसको राव चार दिन का सुनाना चाहते हो सिर्फ दो मिनट में है तो हाथ खड़ा करो। आए कोई अनुभव सुनाना चाहते हो कि चार
दो माताएं दो भाई, पहले आओ फिर आओ। देखेंगे लहर आती है तो है? पहले माताएं उठो,
पहले माताएं
आ जाओ, आ जाओ,
आइए,
वंदे मातरम।
ताली तो बजाओ, अच्छा अनुभव सुनाने आ रहे।
ओम शांति। मैं बशीरबाग हैदराबाद सेंटर हैदराबाद बशीरबाग है। मैं जब यहाँ पर आई तब तक तो एकदम ठीक थी, रात से ही तबीयत बिगड़ने लगी। सोचे ऐसी रास्ते में हो गया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि कुछ सुन रही हूँ तो सुन नहीं रही हूँ, बस दिमाग कहाँ है। तो मैं परसों सवेरे बाबा के सामने बोली, बाबा मैं यहाँ बट्टी में आई या ऐसे ही, अब मेरा कैसे होगा, ऐसे इसे तो नहीं आती ठीक। बाबा को बोल दिए, फिर बाहर आई, दादी जी का चित्र था, फिर दादी जी से भी बोली, दादी मैं क्या करूँ। जैसे ही मैं बाहर आई, गेट के बाहर राजू भाई मिले, बात की, पीछे पीछे कुलदीप बहन जी आए, फिर बात किए, थोड़ा आगे बढ़े, बहन जी से बात किए, ओम शांति भवन के वहां घुसे, बोली बहन जी आज तो मेरी ऐसी आदत हो गई। बहन जी ने ऐसे हाथ पकड़ कर खींचा और ऐसे नस दबाई, ऐसे लगा जैसे कि एकदम से आंख में कुछ चमक आई, फिर भी उतना ठीक नहीं हुआ। मुरली होने के बाद फिर बहन जी के पास फिर गई, बहन जी ने फिर से हाथ पकड़ कर खींचा, पूरे पॉइंट दबाए, शाम तक ऐसे हल्की हो गई जैसे बाबा ने फरिश्ता ही भेजा था। और मैं इतने हल्की हो गई हूँ बस बोल नहीं सकती। थैंक्स बाबा का और आप सब परिवार का, ओम शांति।
और कोई बहन? प्रश्न था रोगी से निरोगी, निरोगी यही बन रहे हैं। आइए, और कोई बहन सुनाना चाहेगी अपना अनुभव? कौन आना चाहता है? जल्दी जल्दी बढ़े। अच्छा, जब तक बहन कोई सोच रही है तो भाई आए, आ जाए। इनके बाद किसको आना है वो भी तैयार रहे। कौन आना चाहता है?
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम प्रकाश कुमार,
थोड़ा नजदीक लेने माइक।
शांति सरोवर हैदराबाद। भट्टी शब्द बहुत सुने वहाँ हैदराबाद में, भाई साहब ने भी भट्टी कराई, यहाँ भी भट्टी। भट्टी से अगर हम कोई चीज प्रेरणा लगती है, भट्टी मतलब उसमें कुछ अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रज्वलित भट्टी में ही होती है। और जैसे कुम्हार है वो भी कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर बर्तन बनाता है, मकान जो बनते हैं ईंट ईंट भट्टी में, ईंट को सांचे में मिट्टी डाल के पक्का करके स्थूल घर बनते हैं। इस भट्टी में हम जहाँ आत्मा इस घर में रहती है उसको पक्का करने के लिए असरीरी होने के लिए ये जो भट्टी का आयोजन किया गया, ये करने से हमको हर समय फायदा होगा। इस आत्मा को जो माया वार करती है, विक्रम आते हैं, इस शरीर पक्का हो जाएगा तो कभी भी हम यज्ञ छोड़ के नहीं जाएंगे।
और कोई माताओं में से आए? अभी की बट्टी, चार दिन की मधुबन में आने के बाद जो बट्टी का अनुभव है,
तेलुगु में बोलो बोलो, अपने आप समझेंगे सब।
ओम शांति। हैदराबाद दिलशुक नगर सेंटर से आया हूँ। मेरे नाम सुजाता। मैं योग में बैठे तो नींद आता जल्दी, तो हाफ एन आवर के बिना मैं कर नहीं सकती हूँ। क्या करना, ज्ञान तो बहुत सुन रहे और सुना रहे, मगर योग का आनंद क्यों नहीं ले रहे? ऐसा दो दिन आया और क्लासेस में भी नींद आ रहे। ऐसे बाबा से बात करके कल नाइट ऐसे ही बात करके मैं बाबा से बात करके बोल के सारा दिन बीत गया, और कितना आनंद आया, नींद नहीं आया, और आज अब तक सोया नहीं और एनर्जेटिक हो गई। सो योग में बहुत आनंदमय आज लिया, ये मेरे लिए बहुत क्या मैं बात में नहीं वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। सो इतना आनंद लिया मैं, और मुझे बहुत आत्मविश्वास आ गया। योग बहुत इजी है, ये कठिन नहीं है, योग बहुत इजी है। कुछ ट्राई अभ्यास से वो जरूर आता, वो आनंद जरूर कर सकते हैं। वैसे
आज भी शाम को योग का कार्यक्रम है, तो आप और भी लाभ ले पाएंगे। और कोई आए, जल्दी जल्दी आए।
सुनाएंगे माता जान, वो सुनाएंगे।
ओम शांति।
सुना करके फिर पूरा करेंगे, योग करके पूरा
करेंगे। योगम చేస్తున్నప్పుడు ना ఏంటంటే వ్యర్థ సంకల్పాలు చాలా వస్తాయన్నమాట నాకు ఇప్పుడు కూడా ఒక అరగంట కూడా కంట్రోల్ కాకుండేది అయితే ఐదు స్వరూపాల అనుభూతి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనస్సు మరియు బుద్ధికి అనే పని పెట్టమని చెప్పాడు కదా రామ్నాథ్ భాయ్ తుమ్ కోన్ హే తుమారా గున్ హే గున్ క్యా హే రూప్ క్యా హే అని చెప్పారు కదా ఆ విధంగా నేను యోగం చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ప్రయోగం చేశాను వ్యర్థ సంకల్పాలు అసలు రావడం లేదన్నమాట ఇది ఒకటి అనుభవం చేశాను నేను బట్టిలో ఓకే ఓం శాంతి
బహన్ बुला लो वो जो गीत गाएंगे।
ओम शांति। वैसे तो मुझे ज्ञान में आते 25 साल हो गए, बहुत सारे प्रश्न आते थे, लेकिन एक ही विश्वास था कि बाबा है, बाबा देख लेगा, बाबा कर लेगा। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि जो संकल्प करो वो हो रहा है, जो संकल्प करो वो हो रहा है, सवेरे से लेकर रात तक। और इस बीच में जब भट्टी चल रही थी उसमें मेरा एक बहुत बड़ा ये भी हुआ, मेरे लिए एक प्रॉब्लम भी आया, और प्रॉब्लम भी मैं कैसे उसको सॉल्व कर रही थी कि भाई जी के क्लासेस और इनके सबके क्लासेस सुन सुन के उसमें से मैंने एसेंस निकाल के वो अप्लाई किया, और वो काम इतनी इजीली और बहुत अच्छा हो गया। और हर बात में जो ये प्यार मिल रहा है, मैं ये चार पांच दिन में पूरे परिवार वालों को भूल गई, बिल्कुल कोई याद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि यही परिवार के साथ हमेशा रह जाऊं, यही रह जाओ, ऐसा मेरे को दिल लग रहा था। बहुत खुशी। और दो बजने दो, ढाई बजने दो, जैसा ही योग का टाइम हुआ, तीन साढ़े तीन घर पे तो उठते थे, लेकिन यहाँ तो दो बजे से नींद खुल रही थी, ना दिन में ना रात में नींद आने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन योग 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 की खींच हो रही थी। और ये सब प्यार ये भाइयों की और बहनों की वजह से हुआ है, और ये वातावरण से हुआ है, ये मुझे बहुत 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 इसकी खुशी मैंने उठाया है, और इसको मैं शायद मैं कभी भूलूंगी भी नहीं। थैंक यू भाई साहब।
आप देखिए बच्ची का अनुभव गीत के माध्यम से, गीत गाने के लिए हमारे पास भाई आए हैं, तो ये भाई बहने मिलकर के ग्रुप सॉन्ग बच्ची के अनुभव के साथ लो।
इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ,
इधर आ जाओ तो ये माइक भी मिलेगा, इधर माइक भी मिलेगा,
इधर माइक मिलेगा, इधर आ जाओ।
ओम शांति। बाप दादा ने, दादी दीदियों ने, बड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने हमारा तो बहुत आदर सत्कार किया, इस भट्टी को रखकर हमारे लिए, जो हमारे लिए व्यवस्था की स्थापना की है, उसका रिटर्न हम धन्यवाद के रूप में तो नहीं दे सकते, लेकिन कहते हैं जब मन में ज्वार भाटा उड़ता है कुछ कहने के लिए तो कहे बिना रुक भी नहीं सकते। तो इनके लिए चंद शब्दों में कुछ गीत कविताएं तैयार हुई है, तो मैं सबसे पहले बाप दादा को भेंट करना चाहती हूँ, उसके बाद इन वरिष्ठ भाइयों के प्रति ये जो गीत है वे इसको दिल से स्वीकार करें। कहते हैं जिसने धरती को रंगा उसे बहार कहते हैं, जिसने धरती को रंगा उसे बहार कहते हैं, जिसने दिलों को रंगा उसे प्यार कहते हैं, जिसने दिलों को रंगा उसे प्यार करते हैं, और जो जीवन को ही रंग देते हैं उसे कलाकार कहते हैं, कलाकार कहते हैं, और वो कलाकार है कौन? पहले तो बाप दादा, फिर हमारे ये वरिष्ठ भाई बहने और दादी दीदियां हैं, और जो रंगमंच को ही रंग देते हैं उसको दीदी चंद्रकला कहते हैं, दीदी चंद्रकला कहते हैं, दीदी चंद्रकला कहते हैं। अब हमारे, हमको जो प्यार मिला, पालना मिली और दुलार मिला, तो उसके लिए हमारा मन क्या कहता है इस भट्टी के प्रति, इन वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति, बाप दादा के प्रति, वो मैं इस गीत के द्वारा, कविता के द्वारा बताना चाहती हूँ। पालना मिली जो प्यार मिला, पालना मिली जो प्यार मिला, दादी दीदियों का दुलार मिला, दादी दीदियों का दुलार मिला। अब दिल ये हमारा कहता है, अब दिल ये हमारा कहता है, सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है, सच पूछो दीदी जाने
जी कर रहा है यहाँ से,
हाँ, सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है, माना ये कर्ज चुकाना है और फर्ज निभाने जाना है, जाना तो है, जाना ये कर्ज निभाना है और फर्ज निभाने
जाना है,
पर वादा लेकर जाते हैं दीदी फिर से हमें बुलाना है, पर वादा लेकर जाते हैं दीदी फिर से हमें बुलाना है, सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है, सच पूछो सच अब किसी का जीना
करता है,
भट्टी रख कर हैदराबाद वालों की कितना है सम्मान दिया, भट्टी रख कर हैदराबाद वालों की दीदी कितना है सम्मान दिया, ये तन यहाँ से भल जाए पर मन तो यहीं पर रहता है, ये तन यहाँ से भल जाए पर मन तो
सच पूछो दीदी जाने का अब मसीह का मन ना करता है। सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है। भट्टी से इतनी शक्ति मिली, भट्टी से
इतनी शक्ति मिली,
अब प्रत्यक्षता को लाएंगे। भट्टी से इतनी
शक्ति मिली, अब प्रत्यक्षता को लाएंगे।
वादों को पूर्ण निभाएंगे, कुछ करके हम दिखलाएंगे। वादों को पूर्ण कराएंगे, कुछ करके हम दिखलाएंगे। सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है। सच पूछो दीदी
जाने का अब किसी का जीना करता है।
एक शर्त है हमारी, एक शर्त है हमारी, जाएंगे लेकिन शर्त है, अर्ज है,
हर साल हमारी भट्टी हो, हर साल हमारी भट्टी हो, इस शर्त पे हम भी जाते हैं। हर साल हमारी भट्टी, ये अर्जी हमारे दिल की है, जो नैन के आंसू कहते हैं। ये अर्जी हमारे दिल की है, जो नैन के आंसू कहते हैं। सच पूछो दीदी जाने का अब जीने का जीना करता है। सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है। पालना मिली जो प्यार मिला, दीदियों का हमें दुलार मिला, अब दिल ये हमारा कहता है। सच पूछो दीदी जाने का अब किसी का जीना करता है। सच पूछो जीना करता है, अब किसी का जीना करता है।
अब इनका धन्यवाद करने के लिए, जैसे कविता कहने के लिए कला चाहिए, कविता कहने के लिए कला चाहिए, गीत गाने के लिए गला चाहिए, बाबा और दीदी भाई जी को धन्यवाद करने के लिए तालियां चाहिए।
जोर से
ओम
ओम शांति।
देवता प्रसन्न हो गए।
जैसे बताया गया कि आदि सो अंत जो गीत सतीश भाई ने गाया था हम लोगों के लिए, तो ऐसे ही महसूस हो रहा था पांडव भवन में कि जैसे शुरू में हम जब आते थे बाबा से, हमको जो प्यार मिलता था, जो पालना मिलती थी, जो भावना मिलती थी, वो अभी ऐसे जैसे पुरानी यादें हमारी फिर ताजा हो गई और वही सारी फीलिंग्स हमको अभी महसूस हो रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाप दादा को, राजू भाई को, क्योंकि खास अभी ये भट्टी में हमारा सहयोग पूरा पूरा राजू भाई का रहा, चंद्रिका बहन का रहा, कविता बहन आपने भी बहुत अच्छे से हमको सही तरीके से सटीक तरीके का जवाब हमको आपसे मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओम। छोटा सा गीत है जो है तो पिक्चर का, अगर सबको मस्ती आती है तो गाना।
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है बाबा, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है बाबा। एहसान पे तुम्हारा है बाबा, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है बाबा। बाबा ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया। बाबा ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है बाबा।
चलो
ये दिल तुम्हारे प्यार कमारा है बाबा।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी ब्रिजेश भाई अपने मन के उद्गार चंद शब्दों में कुछ पेश करना चाहते हैं।
एक्चुअली जिन किसी जो भी भाई बहनों ने हमारी क्लास कराई, दो दो लाइनों में उनके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं। दादी गुलजार जी ने हमें खुश किया और सदा खुश रहने का वरदान दिया, और यह सारी भट्टी हमारी खुशी से भर दी सिर्फ दादी के इस मिलन से। दादी रतन मोहिनी ने बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने का पाठ पढ़ाया। जैसे शीलू बहन को साकार बाबा ने वाणी का वरदान दिया, वैसे दादियों ने भी इस भट्टी में रंग चढ़ाने का बहन चंद्रकला बहन को वरदान दिया। शीलू बहन ने हमें 5 केले खाने का दादी जी का पैगाम दिया। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले होकर अकेले के साथ, अकेले में अकेले होकर अकेले के साथ जाना है। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्मसंयम और आत्मबोध का ध्यान कराया। राजू भाई जी जो जिनको हम हैदराबाद से लेते हुए आए हैं इस भट्टी कराने में, हमारे यज्ञ रक्षक हैं। दिनचर्या स्वस्थ हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमें बातें सिखलाई। यह सिखाया कि योग का आधार पवित्रता है, सच्चे हैं तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं, यह उन्होंने अपने दृष्टि वृत्ति से हमें बताया। रामनाथ भाई पवित्र घर पवित्र तन, पवित्रता की गहराई समझाई। आत्मा के न गुण के 7 गुण और परमात्मा के 8 शक्तियों को समझाते हुए यह बताया कि सभी को कुछ न कुछ देकर जाना है। इच्छा राजा के लिए अपवित्रता की निशानी है, यह सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने तो हमें ज्ञान और योग की गहराई में जाने का एक रिसर्च का माध्यम सिखाया। आत्म प्रकाश भाई जी ने अपने आत्मकथा से, आत्मदर्शन से हमें अपना जीवन चरित्र बताया और यह सिखाया कि बाबा हमारा डियरेस्ट मदर है, स्वीटेस्ट फादर है, हाईएस्ट टीचर है, खोलिए सदगुरु सलोना साजन और फेथफुल फ्रेंड, फेथफुल चाइल्ड एंड अनफेलिंग फ्रेंड। तो यह हमें बहुत अच्छी लगी। फिर उषा बहन फरिश्ते समान आई, हमें हल्का बनाकर बाबा के पास फिर फरिश्ते होकर जाने का यह पाठ सिखलाया। उनको बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं रहने चाहिए, यह सबसे बड़ा पाठ हमें बताया। रामनाथ भाई जी का भी पवित्र तन पवित्र मन गहराई समझाते हुए यह कुछ न कुछ सभी को देने का यह पाठ पढ़ाया। वो दूसरी बार जब आए तब हमें यह सब क्लियर कराया। सूरज भाई घर में भगवान आते हैं ये कहकर घर 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 को तीर्थ बनाया, वह महान तीर्थ बनाने का एक माध्यम बना। चित्त जितना शांत हो उतने उतने वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे, उन्होंने खुद करके दिखाया। गीता बहन आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहो, बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा, यह खुद करके हमें सिखलाया। अनीता बहन फिर राजू भाई के साथ हमारे सब प्रश्नों का उत्तर दिलाया।
कविता बहन सॉरी, थैंक यू, ओम शांति।
हमें दिल में बता लिया,
हे
नजरों में समा लिया,
बाप का शुक्रिया, बाप का शुक्रिया,
बाप का शुक्रिया, बाप का शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी।
शाम को पुनः वही दिनचर्या रहेगी, 4 से 5 जैसे आप बाबा के कमरे में शांति स्तंभ पर योग करते हैं, 5 से 5:30 संगठित रूप से योग ओम शांति भवन में चलेगा, और 5:30 से 7:30 बिंदु रूप की स्थिति क्या है, कैसे अनुभव करें, और फिर उसके साथ साथ योग का अभ्यास चलेगा, एक तरह से पूरा योग का सत्र रहेगा, और रात्रि पुनः सतीश भाई हमारे मध्य होंगे 9 से 10 मेडिटेशन हॉल में। ठीक है, आप सबने बहुत प्यार से अपने अपने अनुभव सुनाए, बहुत अच्छा लगा, और आप सबने जो भी आपको टीचर्स मिले उनकी भी विशेषताएं सुनाई, उन सब की तरफ से आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। शाम को ही आज हम भी आपसे विदा लेंगे, शाम को हम भी जाएंगे जयपुर की ओर, आप सबका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद।
ओम शांति। बहन जी आउट ऑफ थैंक्स के लिए बोल रही हैं, लेकिन चंद्रकला बहन जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बाबा को तो सभी ने बोल दिया, लेकिन एक अच्छी शब्दों में कुल्ली बहन जी भी सुबह मुझे बता रही थी, चंद्रकला बहन जी को अपन किडनैप करके लेके जाएंगे हैदराबाद को बोल के, तो रेड रेड रोजेस आर इजी टू कलेक्ट, रेड रेड रोजेस आर इजी टू कलेक्ट, बट चंद्रकला बहन जैसी सिस्टर सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओम शांति। और राजू भाई जी तो हमेशा अपने हैदराबाद के लिए अपना भाई बनकर हमेशा तो आते ही रहते हैं, और अपना राजू भाई के लिए रिच पीपल लिव इन बिल्डिंग्स पुअर पीपल लिव इन हार्ट्स, बट राजू भाई जी लिव इन अवर हार्ट्स, वी हैदराबाद चिल्ड्रन लिव इन राजू भाई हार्ट। और आप सब भाई बहनों के लिए भी हम बाबा की तरफ से यही कहते हैं कि हिम्मत रखने वालों को मिलती है मदद भगवान की, हिम्मत रखने वालों को मिलती है मदद भगवान की, जैसी मेहनत वैसी किस्मत बनती है इंसान की। तो आप सभी भाई बहनों, ये बट्टी करना बड़ी बात है, लेकिन जो भी भाई बहने अपने को यह बहुत अच्छी तरह से क्लासेस सुनाए वो सब साथ लेकर जाना, और हिम्मत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओम शांति। और एक फोटोस रेडी हो चुके हैं, जिनको भी फोटोस चाहिए, एक फोटो का रेट 30 रुपीज है, अभी नाम लिखाना है, कल सुबह 9 बजे हम आपको फोटो दिलाएंगे। कविता बहन जी भी, कविता बहन के लिए हिंदी में सुनाऊंगी,
तेलुगु में सुनाइए।
अंगूर के डाली को अंगूर लटकते हैं, कविता बहन की प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे तो प्यार की आंसू टपकते।
अभी अभी प्रश्नों में कहा था राजू भाई के लिए कि रेडीमेड है, मैं तो समझती हूँ ये बहन हमारी रेडीमेड है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपके लिए सीडीज भी आई हैं, जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं, जो आज जा रहे हैं उनको हम पहले दे पाएंगे, और हम सबकी तरफ से कविता बहन, राजू भाई और हमारी तरफ से मैं आपको एक छोटी सी बात कह देती हूँ, गुड बेटर बेस्ट, 3 शब्द हैं, good, better, best. Never let it rest until your good becomes better and better becomes best. Om Shanti.
सीडीस बट्टी का आए हैं, हाँ जो आज जाने वाले हैं वो जो लिखाए हैं वो सीडीस लेके जा सकते हैं, हाँ जो अभी जाने वाले पहले आकर के ले सकते हैं, जो भी अभी अभी जाने वाले हैं निकल रहे हैं वो यात्रा भोजन भी लेकर के जाएं, डाइनिंग से यात्रा भोजन भी रेडी है तो अब लेके तक जा सकते हैं, तो जिसको सीडी चाहिए मेरे पास आकर के ले लें।
ओम शांति। सभी मेरी आवाज पर ध्यान देंगे, आज जो फोटो सेशन हुआ था उसकी फोटोग्राफ्स कल यहीं से आपको मिलेंगे, और जिसको चाहिए वो अपने ऑर्डर्स भी बुक कर दें अभी रेनू बेन को।